سبسکرائب کریں.
کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا بیٹسمین
نہیں نہیں
Y vos sabés que tiene que quedarme en una cuestión de día, ¿no? Tú creo que era con algo disco.
Ya que a mí me llegué aquí, aunque ya por fin lo hago, solo me choque si es que tiene la manera.
¿Qué es para?
¿Ya lo va a ti, vos sabés, no?
Tierra o la puri pons, quítelo, formo con, quítelo. Or, aquí,
उधर जाएगा ले रहा होगा कि यार इसकी टांगों के बीच में से गेंद निकालनी है या उधर से मारनी है शॉट क्या करनी है मैं अनाड़ी हूँ तो वो वाले को एक रन बना के इधर ले आऊँ इस प्लानिंग में टाइम गुजारेगा ना
अच्छा आपने हाँ ना जी ये सब करना है ऐसा ना खुद बन के बैठे रहे
ये नहीं चलेगा
तो
बैट्समैन जिस कंडीशन में होता है बॉलर जो बॉलिंग करा रहा है वो भी देख रहा है ये छह बॉलें रह गई हैं और ये ऐसी ऐसी बॉलिंग करानी है कि ये हड्डी पत्ती टूट जाए इसकी बस रन ना बना सके
क्यों तो पता है लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है या लास्ट ओवर है दोबारा ये इस सीरीज का ओवर हमें
नहीं मिलेगा
हालांकि उनको दोबारा बार बार मैचेस खेलने का मौका दिया जाता है
तो मेरे भाई हमें अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ये आखिरी ओवर है हमारा पहला और आखिरी इसके बाद हमें दोबारा जिंदगी
नहीं
मिलेगी
और जितनी गेंदें जितनी बॉलिंग की अल्लाह ने हमें पिच पे खेलने की इजाजत दी है ना जिसको मैं जिंदगी के सालों से काबिल वो साले नहीं जो ससुराल वाले साले होते
मैं जबकि साले बोलता हूँ तो मेरे दिमाग हो क्योंकि मेरे होलसेल के हिसाब से साले आम लोगों के दो तीन होंगे ऐसे खुशकिस्मत साला फिर ही है वो तो खुद साले हैं अब बताओ जिसका साला ना हो वो तो खुद साला बन जाएगा ना
तो ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम है अल्लाह ने ना इंसान को टेंशनों में पैदा किया है ताकि वो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारे इसलिए अल्लाह ने उसको साले भी दिए सुसराल भी दिया और बहुत सारे रिश्ते दिए अल्लाह ने उसको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता आके उसकी उम्र लिख देता है ये कितने साल जिंदा रहेगा कितने महीने कितने दिन कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड अब मैं और आप जितनी जिंदगी लेकर आए हैं डेली बेसिस की बेस पर हमारी जिंदगी के ओवर रोजाना कम हो रहा
है
हमने कोई 60 साल की लाइफ लेके आया कोई 75 साल की यहाँ गोरों की सेहतें अच्छी होती हैं ये 80-90 निकाल देते हैं अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ होता है जो पेरिस में रहेगा वो 80 साल में भी रिटायर नहीं होगा और हम लोगों के यहाँ 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है वो क्यों है वो आप जाने उसकी बहुत बड़ा वजह ससुराल भी है ससुराल में दामाद को जल्दी रिटायरमेंट के काबिल बना देता है तो अब जो जितनी उम्र लेकर आया है जितना टाइम लेकर आया है साल खत्म होने के बाद उसकी जिंदगी का एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है होना ये चाहिए था जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है इस जिंदगी में कुछ करने का जज्बा बढ़ता चला जाए लेकिन हो क्या रहा है जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है कुछ ना करने का शौक बढ़ता चला जाता है
आप कह सकते हैं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं यार मुफ्ती साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं यार हम पेरिस आ गए इंडिया से पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों से यहाँ अरब लोग भी हैं मुरोको से आ गया तो आप कह रहे हो कि कुछ करने का जज्बा बढ़ता जाए हमें तो बढ़ रहा है कम थोड़ी हो रहा है देखो करने का मतलब क्या है क्या करना है अफल तरीके जिसको पश्तो में कहते हैं ना अफल तरीके से करना उस करने को अल्लाह नहीं मानता ये वाला करना जिसको दौलत कमाना इज्जत कमाना कहते हैं ये फिरौन ने हमसे ज्यादा किया ये काम समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आप जितनी स्ट्रगल करो आप कानून से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते जितनी आप स्ट्रगल करो मेहनत करो आप फिरौन से ज्यादा इज्जत
बोल रहे ना
नहीं कमा सकते।
जब तक उस सिंह में मेहनत नहीं करेंगे जिस सिंह में आपको अल्लाह की किताब गाइड नहीं करती, उस वक्त तक الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا। कुरान कहता है दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपने बारे में ये ख्याल है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि उनकी उनकी मेहनत और उनके काम का अंजाम जीरो है। उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। तो ऐसा ना हो कि आपके काम का और आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकलने वाला हो?
जीरो।
आप कह सकते हैं यार मुझसे सब अजीब बात कर रहे हो, हमारी मेहनत का अंजाम तो जीरो नहीं है। हम पहले पाकिस्तान में गोले डंडे की रेडी लगाया करते थे, गोल गप्पे बेचा करते थे। यहाँ जब से हम आए हैं तो आप देखो हमारे पास कितना पैसा है। और कुरान क्या कह रहे हैं? बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं जो हमारा बताया हुआ तरीका नहीं है, उससे हटके मेहनत कर रहे हैं। उनकी सारी मेहनत क्या हो रही है? जाया तो नहीं हो रही। सवाल समझ में आ रहे कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा, आपने पेपर पे लिखना है, क्योंकि हमारा वहां जर्मनी में तजुर्बा ये हुआ कि हमने पब्लिक को खुलेआम सवाल पूछने की इजाजत दी ना खड़े होकर, तो कोई उधर से तो कोई उधर से, तो वो मैनेजमेंट मैनेज करना ही हमारे लिए मुमकिन होगा कि उसको जवाब दें कि उसका जवाब दें कि उसका जवाब दें। तो इसलिए लोगों के एकदम से सवाल आना शुरू हो गए कि वो सिलसिले बंद करना पड़ा। तो पेपर पे पर्ची से आप लोग लिख के यहाँ छप्पड़ में जमा कराते हैं, समझ में आ रही? यहाँ जमा कराते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी सवाल आएंगे पूछने में आपने शर्माना नहीं, ठीक है? पूछने में आपने कोई दिल में इस्लाम के बारे में एतराज हो तो मैं कोई फतवा नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर। बहुत से लोग बड़े बड़े एतराज दिल में लेके बैठे हुए होते हैं, वो इस्लाम से निकल रहे होते हैं, उसको इस्लाम से बड़े बड़े एतराज होते हैं, कोई उनको जवाब नहीं देता सवाल, तो डर रहे होते हैं कि मौलवी साहब से पूछेंगे तो कहीं सीम ना मार दे, टक्कर ना मार दे। तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह टक्कर नहीं मारूंगा, ना मैं कोई फतवा लगाऊंगा। जो पूछना है आप पूछें, ठीक है? तो कुरान क्या कह रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहनत दिल आखिर क्या हो रही है? रायगा। कैसे रायगा जा रही है? देखो दो आदमी दौड़ लगा रहे हो, रेसिंग का मुकाबला हो रहा है, लेकिन दौड़ने के बाद जहां वो आखिरी पॉइंट है ना, जहां जिस लाइन को क्रॉस करने पर हम ये कहेंगे कि ये जीत गया, उसके फौरन बाद एक गहरी खाई है। उसके फौरन बाद क्या है?
खाई।
बोलो
खाई।
आपको बताया कि जैसे ही मैंने तेज स्पीड से भागते हुए इस लाइन को क्रॉस किया तो अगला कदम मेरा कहां है?
गहरी
खाई। हारने वाला भी जब उस लाइन को क्रॉस करेगा उसका अगला कदम भी कहां है? और वो इतनी स्पीड से लोग वहां आते हैं कि ब्रेकें फेल हो जाती हैं, एकदम रुकना मुमकिन नहीं होता। तो बताओ इस जीत के मुकाबले में, इस रेसिंग के मुकाबले में आने की कोई कोशिश करेगा?
नहीं।
कोई कोशिश करेगा?
नहीं।
अंजाम क्या है? खाली है। ये जो दुनिया की दौड़ है ना, पैसे पैसे में आगे निकल जाऊं, इज्जत में आगे निकल जाऊं, अय्याशी में आगे निकल जाऊं, इसका अंजाम है मौत। हर चीज का अंजाम क्या है? तो यहां जीतने वाला भी जीरो, हारने वाला भी
जीरो।
बोलो जीरो। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये जो गहरी खाई है जिसमें आप गिरेंगे, इसमें नीचे गिरने की जगह नहीं है, नीचे कोई शख्स गोद में लेने वाला मौजूद है, तो आप कोशिश करोगे यार मुझे हार जीत की फिक्र नहीं है, वो जो मुझे कैश करने वाला आदमी है ना उससे दोस्ती बना के रखो, क्योंकि जाना किसके पास है? उसके पास जाना है। थोड़ी देर के लिए डेली बेसिस पे या 5 मिनट निकाल के ये सोचा करें। असल में दुनिया में रंग रलियां इतनी ज्यादा है कि आज दुनिया जितना अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है,
इससे पहले दुनिया ने कभी किसी को अपना ऐसा आशिक नहीं बनाया। पहले दुनिया लोगों की माशूका बनती थी, लेकिन वो इतने लिपस्टिक पाउडर लगा के नहीं आती थी, इश्क होता था एडलाल से। अब दुनिया ने इतने लिपस्टिक पाउडर और ऐसा फैशन इख्तियार किया हुआ है कि आदमी उस दुनिया की तरफ नजर लगाने से एक पलक झपकने के लिए भी तैयार नहीं है। अब दुनिया का फितना पहले के फितने से कई गुना ज्यादा है। ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना जिसके बारे में आपको पता हो कि ऐन आलमे शबाब में आपको तनख्वाह छोड़ के चली जाएगी, ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना अच्छा काम है या बुरा काम है? मैं अक्सर इसकी मिसालें देता हूँ। यहाँ के स्टेशन तो मुझे नहीं पता था, मैं तो पाकिस्तान के स्टेशनों की मिसाल देता हूँ। आप कराची से पिशावर जा रहे हैं, जिस सीट पे आप बैठे सामने कोई महुआ बैठी हुई है, जो कहाँ जा रही है? मुल्तान। आपने महुआ तो बाद में बनी, अभी बनी नहीं, अभी बनाऊंगा मैं। आप कहेंगे पहले से कहाँ से आ रही है? कोई लड़की बैठी हुई है, कोई दोस्त बैठा हुआ है, ऐसे आप उससे लट्टू हुए, आपको पता है कि इसका स्टेशन मुल्तान है, मेरा स्टेशन पिशावर। ऐसे लट्टू हो गए आप उसके ऊपर थोड़ी देर में, ऐसी गपशप, ऐसी मोहब्बत, जब वो मुल्तान पे उतर के जा रही है, आपका कलेजा फट रहा है। आप लोग हाय ये क्या हो रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? तो लोग कहेंगे तू भी चला जाए यार इसके साथ, जब इतना तेरा दिल खराब हो रहा है तो तू भी चला जाए। आप जवाब में कहते हो भाई मेरा स्टेशन पिशावर है, मेरे घर वाले वहां है, मेरी जॉब वहां है, बीवी बच्चे वहां है, मैं कैसे चला जाऊं? फिर लोग क्या कहेंगे, अच्छे इसको अपने साथ ले जाए, अगर मेरे फलसफे पर अमल करेंगे तो ले जाएंगे। लेकिन अगर उस फलसफे पर नहीं है तो आप उसको ले जा सकते हैं अपने साथ। वो कहेगी भाई मेरा घर मुल्तान में है, तू मुझे अपने साथ पिशावर क्यों लेके जा रहे हैं? यही कहेंगे। तो ऐसे मौके पे लोग क्या कहेंगे, भाई जब तुझे पता था कि इसका स्टेशन अलग है, इसका स्टेशन अलग है, तो तूने ऐसी बहुत जल्द जुदा होने वाली से दिल क्यों लगाया? तुझे पता था यार बैठा हूँ ट्रेन में, टाइम पास करो, हेलो हाय करो, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक, सब फैट, मार्केट में सब सही चल रहे हैं, इमरान खान की तकरीर सुना दो, फिर जेएनवाई की सुना दो, फिर थोड़ा तस्करा नवाज शरीफ पे कर लो, इसके अलावा इससे ज्यादा आप अपने हम सफर को फ्री कराने की कोशिश बोलो नहीं करते। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम का कुरान में तज़किरा किया कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने सितारे को देखा और रब्बी फरमाया ये मेरा रब है, क्योंकि चमकदार है, रात के वक्त बड़ा अट्रैक्टिव होता है, इससे मुझे मोहब्बत करनी चाहिए। फलम्मा अफला, जब सितारा गायब हो गया, और अला उहिब्बुल आफिलीन, फरमाया मैं फना होने वाली चीजों से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत उससे की जाती है जो कभी भी फना नहीं होती। फलम्मा रअ अल-क़मरा बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, फिर देखा चांद निकला, कहा ये मेरा रब है, मैं इससे मोहब्बत करूंगा। फलम्मा अफल, जब वो भी गायब हो गया, और इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन मिन अल-क़ौमिल ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे नहीं बताया कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, तो मैं हमेशा फना होने वाली चीजों से ही मोहब्बत करता रहूंगा। सारा मसला किसका है मेरे भाई? दिल का है, मोहब्बत का है। जिसको मोहब्बत जिससे करनी चाहिए उससे करनी रहे, जिससे नहीं करनी चाहिए उससे कर रहे। जब सूरज को देखा, और हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, ये तो उससे भी बड़ा है, सितारा छोटा, चांद उससे बड़ा, सूरज उससे भी बड़ा। उनका ख्याल ये था ये इतना बड़ा है कि इसको तो यकीनन दिल देना चाहिए, इससे तो मोहब्बत करनी चाहिए, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा मेरा। ठेले वाले को अपने ठेले से मोहब्बत होती है, मालदार आदमी एतराज करता है, अरे तू ठेले से दिल लगा रहा है, तेरा कोई करोड़ों का बिजनेस होता तो कोई समझ में आता है। फिर जरा इसकी बड़ी दुकान बन जाती है, ये बड़ी दुकान से मोहब्बत करता है, तो करोड़पति कहता है यार इसको ठेले वाले पर एतराज होता है, लेकिन करोड़पति क्या कहता है, अबे तू दुकान से मोहब्बत कर रहा है, मेरा तो इससे भी बड़ा बिजनेस। तो इन मदारिस से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजारा ये बताने के लिए कि चीज छोटी हो या बड़ी, ये ना देखो कि अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, ये देखो कि कौन सी चीज फना होने वाली है और कौन सी चीज बाकी रहने वाली है। जब सूरज को देखा ना जाहिर हुआ चमकता हुआ, आलाहा ये हमें सिखाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है, आलाहादा रब्बी हादा अकबर, फरमाया ये मेरा रब है ये उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या मतलब कि अट्रैक्टिव भी है, चमकदार भी है, इसकी खिदमत भी ज्यादा, इसको तो दिल देना है हमें। फलम्मा अफलत, सूरज की मार्केट से बोलो साथ नहीं रहता, बरी बरी मेरी कौम जिनको उससे तुम मोहब्बत करते हो ना, महबूब बना के उनको महबूद बना डाला है, मैं इन तमाम महबूदों से बरी हूँ। इन्नी वज्जह तु वज्ही लिल्लज़ी फतर समावाती वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन, मैं अपने रुख को ऐसी जात की तरफ फेरता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को बनाया। मोहब्बत करने के लायक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत करने के काबिल नहीं है। फला का लेबल लगा हुआ है ना, जितनी भी अच्छी हो भाई लेबल क्या लगा हुआ है। देखो हम कराची में पाकिस्तान के मिसाल देते हैं कि आपके पास कोई लैंड क्रूजर लेकर आया, बोला ये 3 करोड़ की है मैं आपको 5 लाख में दे रहा हूँ, एकदम आप जज्बाती हो जाओगे, यार 3 करोड़ की 4 करोड़ की गाड़ी मुझे किसमें मिल रही है, 5 लाख, जबरदस्त सीट चेक की आपने, स्टेयरिंग चेक किया, ब्रेक चेक की, हर चीज एवन आपने कहा यार गाड़ी मेरे नाम करा दे, कागज तो उसमें कागज नहीं है इसका, क्या हो गया भाई, उसने क्या कहा, ये नंबर प्लेट तो है ये जानी है, अगर ये नंबर भी लगा था उन्होंने, नंबर भी खुद ही लगाया हमने, कुछ भी पर्चियां निकाली थी, 2 नंबर आ गया इससे हमने, अब बताओ 5 लाख उसकी वैल्यू रहेगी है। आपको पता यार रोड पे लेके निकलूंगा फौरन, 5 लाख की गाड़ी के चक्कर में 5 करोड़ में छूट के आऊंगा मैं, 5 लाख की गाड़ी के चक्कर में 5 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा। क्या आपको कोई बेवकूफ आके कहे यार इतना जबरदस्त स्टेयरिंग तो क्यों नहीं ले रही 5 लाख में गाड़ी, कितनी खूबसूरत थी और एलईडी कैसी जबरदस्त लगी थी, और ब्रेकें देखो टायर देखो इतने साल की वारंटी, आप कहें भाई बात यह है कि इसकी जो नंबर प्लेट है ना ये ठीक, ये ऐसा लग रहा है किसी ने घर में चावल की ट्रे लाके कुछ भी छाप दिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है उसने, 2 टके की वैल्यू आपकी नजर में उस गाड़ी की नहीं, बल्कि आप जान पड़ाओगे अगर भाई मुझे उतार कोई पकड़ के ना ले जाए। तो दुनिया बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, अपनी तरफ खींचती है, यहाँ की अय्याशी, यहाँ के शराब कबाब, यहाँ के नाइट क्लब, यहाँ के चर्च, ठीक है ना, नशे और जो मजे और जिना और नाच गाने और मौसीकी की महफिलें, सारी चीजें इंसान को क्या करती है अपनी तरफ मारी करती है, जवानी यहाँ की, खूबसूरती, लोगों का तारीफें करना, वाहवा करना, ये बड़ी अट्रैक्शन है। इसमें खुदा की कसम ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती काश फना होने वाली ना होती, जिसके फना होने के तसव्वुर ने इस दुनिया की वैल्यू हमारे नबी की हदीस के मुताबिक 2 टके की भी नहीं छोड़ी है। बहुत मुश्किल है बात, यहाँ तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता बात समझाने, पाकिस्तान तो अपना मुल्क है, जब कोई तमीज से नहीं समझ रहा होता पुलिस से बुला लेते हैं समझाने के। अब करना क्या है भाई, जब 2 टके की नहीं है तो मैं छोड़ दें, सवाल ये पैदा होता है ना, आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं, अगर कराची से यहाँ पे 2 टके की दुनिया नहीं है तो क्या चड्डी बनियान में घूमे है भाई, क्या धोती बनियान में घूमे, क्या रक्षों पे आ जाए, पेरिस में रक्षे चलाए, चिंकी चलाए, क्या वही चाहते हो कराची में गटर के ढक्कन गायब हुए हैं तो वही यहाँ भी वही सेटअप हो जाए, तो क्या क्या करना चाहते हो, छोड़ दे खाना पीना, खुद तो पराठे फोड़ रहे होते हो सुबह सुबह, बता रहे होते हो बयान में पठान होटल का पराठा खाया अंडे के साथ, अभी लोग कहते हैं मौलवी लोग बातें कुछ करते हैं, इनका अमल क्या है? कुछ और बातें करते हैं, सादगी और दुनिया से बेरहमती और खुद बड़ी बड़ी पैर खाए हुए, खुद अंदाजा लगा कहते हैं ना लोग बातें ऐसी करते हैं कि जना ये दुनिया बेरहमती, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, सब्र आखिरत। और वो एक साहब मुझे कहने लगे, वो हमारे दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, कोई लड़की गुजर रही थी उसको देख रहे थे गलत नीयत से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बुरी बात है यार, तो कह रहे खुद तो चलाचल करके बैठे हैं मुझे नहीं किसने सब मौलवियों को कह रही मौलाना लोग खुद तो चलाचल करके बैठे थे, उसने हमें देखने भी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या जवाब देता हूँ उसको? तो ये सवाल लोगों के जहन में भी उठते हैं, बातें क्या कर रहे हैं, दुनिया से बेरहमती, दिल लगाने की जगह नहीं है, तो क्या करें भाई, खाना पीना छोड़ दें, जौ की रोटी खाया करें, सत्तू फांका करें, क्या करें भाई? वही करें जो अल्लाह ने बताया। कैसी जबरदस्त हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इस्लाम के बारे में इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि तरफ लगा रहे हैं, बहुत अहम हदीस है। आपने उन सहाबी से फरमाया, क्या तुम्हें उम्मीद है कि जब तक ये तरफ जवान होकर फल देगा तुम उस वक्त तक जिंदा भी रहोगे? यकीन है आका अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर। ये मैं केपीके के किसी इलाके में गया था, तकिए पे ये शेर लिखा हुआ था, वजह से मुझे याद हुआ है। जब मैं सोने के लिए लेटा तो वहां उन्होंने तकिए पे लिखा हुआ था, सोने के लिए मैं लेटा तकिए पे, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मैंने उनसे कहा मेजबान से, शेर बहुत अच्छा है मगर यहाँ लिखने का आराम से सोने दो भाई, हर मौका नसीहत का मौका नहीं होता। हमारे महले में एक साहब ने निकाह पढ़ाया, मियां बीबी की शादी हो रही है, निकाह पढ़ा रहे, तलाक के अहकाम बयान करना शुरू कर दिया। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उनको जाकर समझाया, मैंने कहा हजरत ये मुबारकबादी का मौका है, ये शादी का मौका है, अरे यार तलाक भी तो हो सकती है, तो मैं पहले से सही अहकाम बता दूं। मैंने कहा हो तो ये भी सकता है कि सर फाड़ दे वो उसका जाके, ये भी हो सकता है बेलन मारे उसकी नाक की हड्डी टूट जाए, ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन में आके छलांग लगा कर खुदकुशी के मर जाए, तो फिर खुदकुशी के अहकाम भी बताए, तो क्यों बिना वजह? ये बेमौका है ना, उनको तो भी मुबारकबाद दो भाई माशाल्लाह कितना अच्छा जोड़ा है, क्यों होगी कोई पूछे नहीं तलाक हो रहे तोबा तोबा, अभी क्यों तलाक हो रही है भाई? बाद में मैंने कहा इनको हंसी खुशी एक साल जिंदगी गुजारने, तो दो साल तीन साल के बाद ये खुद आएंगे आपके पास। हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है, सर खुद ही फोड़ेंगे एक दूसरे का, या इस पेंसिल से हटके समझा। वो हमारे यहाँ क्या हुआ, एक साहब बात से बात निकलती है, बहुत से लोग ना बहुत ही क्लियर कट बात करने के आदी होते हैं हर जगह, तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, अहमक और बेवकूफ होने की अलामत होती है, हर जगह क्लियर कट बात ही की जाती है, माहौल देखा जाता है कि ये माहौल इसका है भी कि नहीं है। तो मेरे कहीं बयान सुने देते, उनकी कहीं शादी हो रही, उन्होंने रिश्ते का पैगाम भेजा, तो लड़की वालों को बता दिया मैं 4 शादियों का कायम हूँ, शुरू में बता दी, लड़की वाले ने बात कर दिया, तू दूरी भी करेगा तू तो मुझे कह रहे देखो मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, उनको सुनने से नफरत है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू अजीब सी फजूल किस्म की बात है, वो पहले से डरे धमके बैठे हुए हैं और तू पहले से जा जाके, मैंने कहा फिर ये भी कह देता कर रहे गुस्से में आ गया तो ये भी कर दूंगा, अगर इसने यूं किया तो पूरी डिटेल, वो आपने पोलियो वाला सुना बाकी मैंने बयान से बहुत बताया है, सुना दू दोबारा थोड़ा सा सुना देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, आपको पता है कराची में बिहार के लोग बहुत है ना, बिहारी जबान वाले, वो बड़े क्लियर थे, उनकी कोई शादी नहीं हो रही थी तो मुझे वही सिफारिशी बना के ले गए रिश्ते के लिए ना, मुझे सिफारिशी बना के ले गए, मैंने कहा चलो यार। अच्छा चूंकि उनके कई जगह से रिश्ते मुस्तरद हो चुके थे, लिहाजा थोड़े से वो नफसियाती से हो गए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा वो करने की कोशिश करते थे ना ओवर, कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो मैं उनको लेकर गया ना, तो लड़की वालों ने पूछा भाई क्या करते हो, बताया जी स्टेट एजेंसी में बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो मुझे कहने लगे, उनको कहने लगे देखो मैं कहा बता तू, मेरा अल्लाह से तवक्कुल है, मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा,
मेरा अल्लाह में इतना तवक्कुल है भाई शादी होने दे, बच्चे होने दे, उसके बाद देखा जाएगा कि पोलियो। अब मैं आपको पोलियो मान रहा हूँ कि यार तुम लेडी वैसे नहीं करवा रहे, खैर वो रिश्ते का जाहिर इनकार होना था, आप लड़की वालों से रिश्ता लेने के लिए जाए पोलियो पे पहले से बहस शुरू करते हैं, अगला क्या होगा, गलत उतर जाएगा। असल तो उनके इतने मुस्तरद हो गए थे ना कि वो बेचारा घबरा ही लेते थे। तो मैंने उनको समझाया तो उल्टा पूछ के कर सकते, अच्छा मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई, मसला एक मत है, अगर तो क्यों नहीं पिला रहा, सारी दुनिया पिला रही है तो तू भी पिला देना। तो मैं बात ये कर रहा था आपसे, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करूंगा, आपको सवाल का मौका ज्यादा दूंगा, मुझे नहीं क्या क्या आपके दिल में भरा हुआ होगा वो पूछे आप लोग, यहाँ तो आप यूट्यूब पे भी सुनते ही रहते होंगे। तो देखो मेरे भाई, ये दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन दिल लगाने की जगह नहीं है, क्यों इस पे क्या लगा हुआ है। तो मैं हदीस सुना रहा था, सवाल करता होता है पानी है, दिल भी ना लगाए, मोहब्बत भी ना करें तो क्या करें, फिर जंगलों में निकल जाए, रस्ते में घूमे, क्या करें हम। तो ये हदीस मैं सुना रहा हूँ, इससे आपकी समझ में आएगा कि आपने करना बोलो क्या। तो मैंने एक हदीस आपको अधूरी हदीस सुनाई थी, वो पूरी कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा आप दरख्त लगा रहे हैं, आपने फरमाया ये फल खजूर के दरख्त तो 5-6 साल बाद जाके फल दिया करते, तो आपने फरमाया तुम्हें तुम्हारी उम्मीदें इतनी लंबी लंबी और मौत की खबर तुम्हें एक लम्हे की नहीं है, कल मर जाओ परसों मर जाओ। इस हदीस से क्या पता चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल की प्लानिंग से भी मना कर रहे हैं, इस हदीस से जो लग रहा है हमें, और आप दरख्त लगाने से भी बोलो मना कर रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता। जैसे हम बार बार कहते हैं ऐसे स्कॉलर्स को ना सुने जिन्होंने प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया, ये इसलिए कहते हैं कि ये एक हदीस सुना रहे होते हैं अपने मतलब की, दूसरी वाली इनको पता ही नहीं होती है। जब तक कोई प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं करता किसी भी शोबे में, वो इस काबिल नहीं होता कि उससे मसाइल का इल्म सीखा जाए। इस हदीस को अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो क्या समझेगा, यार इनके मजहब में दरख्त लगाना अच्छा काम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दरख्त मार्केट में आया नहीं है कि इधर लगाओ इधर फल देना शुरू कर दे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो लगते हैं, क्योंकि इनके तो मौलवी इनको ये बताते हैं कि खबर कल की भी नहीं है और दरख्त लगाया जा रहा है 5 साल बाद के लिए। लेकिन हम दूसरी हदीस देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है सहीह मुस्लिम की, आपने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया इसकी जिंदगी में इसको फल नहीं मिला, इंसान तो दूर की बात, जब तक चरिंद परिंद भी उस दरख्त से फायदा उठाएंगे, परिंदे उसमें घोंसला बना के रहते हैं उससे उसके फलों से, पर इंसान तो बहुत आला चीज है, जब तक जानवर भी उस दरख्त से फायदा उठाएंगे। आपने फरमाया दरख्त जाया नहीं हुआ, कब्र में इसको इसका सवाब सदके का सवाल मिलता रहेगा इसको। पहली हदीस में दरख्त के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है या डीमोटिवेट किया जा रहा है, और दूसरी हदीस में ऐसी जबरदस्त मोटिवेशन मिल रही है कि ये मोटिवेशन गैर मुस्लिम के पास नहीं है। गैर मुस्लिम जब मोटिवेट करेगा दरख्त लगाने के लिए तो क्या भाई ऑक्सीजन फैल जाएगी उससे सोसाइटी में, बहुत अच्छी बात है, मरने के बाद तो नहीं है ना। हमारा मजहब हमें कह रहा है दरख्त लगाओ, ये ना देखो कि मेरी जिंदगी में इससे मुझे फायदा होता है कि नहीं होता, जिंदगी में ना हुआ मौत के बाद तो फायदा ही फायदा, जब तक दरख्त रहेगा आपके आमाल में नेकियों का पलड़ा भारी रहेगा, नेकियां जमा होती रहेंगी अल्लाह के दफ्तर में। इससे मेरे भाई हमें ये पता चलता है कि इस्लाम हमसे दुनिया नहीं छुड़वा रहा, इस्लाम दुनिया कमाने में हमारी नीयत को क्या कर रहा है, सही कर रहा है, उसकी इंटेंशन जो हमारी जो नीयत है उसकी स्टेप को क्या कर रहा है कि इस दुनिया को आखिरत का जरिया बनाओ, फिर अगर मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने हैं, मिस्र मुस्लिम रियासत थी गैर मुस्लिम रियासत थी, मुझे ये बताओ गैर मुस्लिम रियासत थी भाई,
इसको यहां ये भी एक पॉइंट की बात आप लोग जरा समझ लें, हमारे यहां बाद लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम चूंकि काफिरों के मुल्क में रहते हैं लिहाजा की हड्डी रवाना ही होना है, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मिलता है कि पैगंबर ने गैर मुस्लिम रियासत में कैसे टाइम गुजारा है। हम यूसुफ अलैहि सलाम से आगे नहीं निकल सकते। यूसुफ अलैहि सलाम को जब याकूब अलैहि सलाम के बेटों ने हसद और जेलसी में कुएं में डाल दिया और कुएं से ताजिरों ने मुसाफिरों ने निकाल के मिस्र में उस पर गैर मुस्लिम रियासत की, तो अभी परम लोग मिस्र में नहीं थे, उनको ले जाके मिस्र के बाजारों में फरोख किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते अजीज मिस्र के महल में आ गए। अजीज मिस्र उस जमाने में बादशाह के बाद सबसे बड़ा मकाम था, यानी रॉयल फैमिली में, सरकारी इदारे में, सरकारी महल में आ गए कि नहीं आ गए। तो वहां उनका एटीट्यूड कैसा था, कैसा उनका रवैया था, इससे हमें बड़ा सबक मिलता है। हम तो कहते हैं ना कुरान जाने किताब है, इसी वजह से तो कहते हैं हर चीज में हमें गाइडेंस कहां से मिलती है, कुरान से मिलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में अजीज मिस्र जो था ना उसको कंट्रोल सारे उसी के पास थे, कंट्रोल सारे किसके पास थे, अजीज मिस्र के पास। अजीज मिस्र के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे हैं। हमें याद पड़ता कि एक दफा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का इमेज अजीज मिस्र की नजर में बुरा गया हो, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, ये मेरी गड़े काट रहा है, लिहाजा इसको मिस्र से बोलो बाहर निकालो। एक बार भी ऐसा भारत के सपने के आना में आया था, क्योंकि पैगंबर से ज्यादा शरीयत पर अमल करने वाला कोई भी नहीं होता। यह सीखना है इन रियासतों में रहने के लिए कि हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि यहां की गवर्नमेंट कहे कि मुसलमानों से ज्यादा हमारे कंट्री से मुखलिस कोई नहीं है, हमारी असल कौम से ज्यादा ये मुस्लिम हमारे मुखलिस हैं। इस तरह आपको रहना पड़ेगा। जिसको जिस ठहरक को पाकिस्तान में गया हुए माली में ना 15-20 साल पुरानी बात है, हमारे दोस्त लाल बत्ती में ना सिग्नल तोड़े हुए वहां पे, वो मैंने कहा भाई वो तोड़ रहा है सिग्नल, उठे ना मैं इस गवर्नमेंट को मानता ही नहीं हूँ। उस वक्त गोदी जाती लीडर था, मैंने कहा भाई गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये नहीं है जिसको वसीम भाई मानते हैं कि नहीं मानते, सरकार ने कहा ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है, इस्लाम ये कहता है कि जिसके हाथ में पावर है, जो पावरफुल है उसको क्या कहा जाएगा, हाकिम। हुकूमत की डेफिनेशन ये जिसके हाथ में इख्तियारात हैं, चाहे वो आपकी मर्जी की हुकूमत हो या आपकी मर्जी के खिलाफ, जब उसके पास इख्तियारात आ गए, मुल्क की बागडोर उसके हाथ में आ गई, तो वो हाकिम है, आपको उसकी इताअत करनी है। हाँ, नाजायज काम में आप इताअत ना करें, लेकिन गवर्नमेंट नाजायज काम नहीं करवाती। कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी शराब पिलाया है यहाँ पे, अगर साहब की गवर्नमेंट आपके मुंह पे शराब लगा के पिलाए तो फिर आप यही फतवा देते भाई नहीं क्यों जायज नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं ऐसा दुनिया में। तो उससे आप ये कहना कि जी कानून तोड़ना, टैक्स ना देना, टैक्स पी के बैठे हैं बहुत सारे लोग, झूठ बोल के रहने मानवत के साथ कोई रह रहा हो तो भाई उसके अलावा नहीं बात कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं, दिल थोड़ी दुखाना ना, बहुत से लोग मिल रहे होते हैं किस सिलसिले में आना होगा, वैसे ही आना होगा तो बगैर किसी सिलसिले के। मैं अक्सर अलग सुनाता हूँ, एक आदमी की शादी हुई, दुल्हन के पास गया तो बातचीत का आवाज कैसे करे, उसकी खोपड़ी में आ गया, समझ नहीं आता यार आवाज कैसे करे। बाद लोग बड़े अदब तहजीब में होते हैं ना, अगर तू दुल्हन है शुरू करते जिस तरह से भी बातचीत करनी है तुम्हें, वहां जाके कह रहे जी मेरी आपसे शादी हुई थी उस सिलसिले में हाजिर हुआ। तो मैं जब से यूरोप आया हूँ मैं बहुत से लोगों से पूछ रहा हूँ आपका यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ, पढ़ने के लिए आए या यहाँ किसी कंपनी ने आपको जॉब पहले दिला दी थी उसके वीजे पे आए या विजिटिंग वीजे पे आए, बहुत से ऐसे जो किसी सिलसिले में बोलो। उन्होंने कहा किसी तरह निकलो बॉर्डर क्रॉस करो, सिलसिले खुद आहिस्ता आहिस्ता बन जाए, ये तो गैर कानूनी है, तो वायदों के खिलाफ कर दी है। तो खैर मैं यूसुफ अलैहि सलाम की बात मुकम्मल करूं, फिर मैं बताऊंगा कि जो मैं बयान लेके चल रहा हूं ये उसी से मुंसलिक है। यूसुफ अलैहि सलाम जब उस रियासत में रहे कितना तवील अर्सा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहे हैं मिस्र में, हमें नहीं मिलता कि किसी एक काम में भी यूसुफ अलैहि सलाम पे ऑब्जेक्शन लगाओ, बिल्कुल गैर मुस्लिम रियासत। आज का जो गैर मुस्लिम रियासत है वो सेकुलर है, वो मजहबी नहीं है, उन्होंने सबको आजादी दी है। मिस्र में ऐसा नहीं था, पहले मजहबी हुकूमतें बहुत मजबूत हुआ करती थी, हमारे अलावा किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। ऐसी ऐसी सेकुलर ऐसी गैर मुस्लिम रियासत में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर कैसा था, उस कैरेक्टर की बेस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह मुंतखब किया गया है। कैसा कैरेक्टर था? सबसे पहला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह की बीवी ने, जो अजीज मिस्र की खूबसूरत बीवी ने बुराई की दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा? इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, ये जो बादशाह है यहाँ पे, ये जो अजीज मिस्र है, इसने मुझे अपने महल में बहुत अच्छा ठिकाना दिया है, मैं उसकी खयानत बोलो नहीं करता। इसमें हजरत यूसुफ ने बता दिया कि पैगंबर या पैगंबरों को मानने वालों पर अगर कोई काफिर भी एहसान करे तो वो एहसान फरामोशी नहीं करते। कमरे में अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत दी है, कोई देखने वाला नहीं था, कोई केस नहीं चल सकता था, बल्कि जिना से बचे तो उल्टा केस करके अंदर कर दिया गया उनको। मैं ये वाक्य कंप्लीट करता हूँ, लेकिन पहले मैं अपना असर टॉपिक जो है ना, ताकि वो रह न जाए, फिर मैं बताता हूँ इस वाक्य में क्या अफवाह मिलते हैं, बहुत अहम अफवाह है। मैं पहले वो उसको जरा, क्योंकि मैं फिर जब दाएं बाएं निकलता हूँ तो फिर बहुत ही ध्यान से इधर उधर हो जाता हूँ। तो मैं ये कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपने याद दिलाना है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य से हमें क्या सबक मिलते हैं, खासतौर पर गैर मुस्लिम रियासत, क्योंकि आप तो यहाँ गैर मुस्लिम रियासत में रहते हो ना, तो आपको क्या सबक मिलते हैं, इसका हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसी पकड़ के रखनी है आपने, ठीक है ना, मैं कहीं भूल ना जाऊँ ये टॉपिक, ये बहुत अहम है। तो मैं ये कर रहा था मेरे भाई, अल्लाह ताला हमसे दुनिया छुड़ाते नहीं है, हमें ये कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी नीयत को क्या कर लो, बोलो ठीक है, नीयत ठीक हो जाएगी, ये भी दुनिया क्या बन जाएगी, इबादत। अल्लाह ने क्या कहा? दुनिया से दिल न लगाओ, ये नहीं कहा कि दुनिया कमाओ नहीं। आप कह सकते हैं कि यार एक तरफ चलो अल्लाह ने हमें परमिशन दे दी, दरख्त भी लगाओ दुनिया भी कमाओ, अच्छा कमाल की बात है, हमें मुस्लिम कंट्रीज में इतने दरख्त नजर नहीं आते जितने गैर मुस्लिम कंट्रीज में नजर आते हैं। कब्र में जाने के बाद दरख्त लगाने का सवाब हमको मिल रहा है, मगर लगा कौन रहा है दरख्त, हमें बहुत ज्यादा लगानी चाहिए। वजह क्या है कि इस्लाम की जो रूह है वो हम अभी तक समझने नहीं पाए, इस्लाम को हमने सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया, उसमें भी बड़े कमजोर हैं, उसमें भी बड़े कमजोर हैं। तो दुनिया छोड़नी नहीं है, दुनिया कमानी है, दुनिया क्या करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा थे ना ताजिर, बाद जो ताजिर सहाबा थे अरबपति सहाबा थे, वो अरबपति हमारे यहाँ ये पूरी कैलकुलेशन की गई, तहकीक की गई कि जो नबी के दौर में मालदार सहाबा थे उनके सरमाए कितने थे, अरबों रुपए के सरमाए थे, हजरत अबू बकर के पास, हजरत उस्मान के पास, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह तआला के पास 400-400 घोड़े डोनेट कर रहे हैं, 400-400 ऊंट डोनेट कर रहे हैं। तो सोचिए ना कि उस जमाने की लैंड क्रूजर थी ऊंट, 400 ऊंट, यानी ऐसे जैसे आपके सेट थे, मुझे नहीं पता यार कौन सी गाड़ी इतनी महंगी चल रही है, हम तो लैंड क्रूजर ही हो सकते हैं, ऊंची ऐसी लग रही है, डबली गाड़ी जैसे भी ना हो आपकी नजर में, लेकिन हम तो नहीं मिसाल है, आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट ठंडा बोर्ड पे फर्स्ट चल लेंगे आप बैठे हैं। तो आप बताओ 400 कुछ महंगी गाड़ियां इस जमाने में कुछ सेट डोनेशन में दे दे तो आप सोचो कितना बड़ा सेट होगा। तो हमारे नबी ने ना हजरत उस्मान को पैसा कमाने से मना किया, ना हजरत अबू बकर को पैसा कमाने से मना किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानदार ताजर कयामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। क्या मतलब? तिजारत को एप्रिशिएट किया गया है। एक रिवायत में आता है मेरी उम्मत के 10 में से 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने बिजनेस में रखे हैं, तिजारत में रखे हैं, तिजारत को मोटिवेट किया जा रहा है, तिजारत छुड़वाई नहीं जा रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने मजीद में आता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़का। हमारे नेक बंदे ऐसे हैं कि उनको नमाज, उनको जो तिजारत है वो नमाज से गाफिल नहीं करती, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो सिरे से तिजारत करते ही नहीं है, ये नहीं फरमाया। तिजारत करते हैं लेकिन नमाज के टाइम पे वो तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करती। तिजारत से नहीं मना किया गया, तिजारत की तरगीब दी गई है, पढ़ाई की तरगीब दी गई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अजीज मिस्र से बादशाह से कहा था इन्नी हफीजुल अलीम, फरमाया मुझे वजीर खजाना बना दो, मैं खजानों की हिफाजत भी करूंगा और खजानों को तकसीम करने का इल्म भी मैं जानता हूँ। बताओ खजानों को तकसीम करना कि कितना रखना है, कितना तकसीम करना है और किस गंदम की बोरी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये तो इकोनॉमिक्स का इल्म है। बताओ ये दीन का इल्म है या दुनिया का इल्म है? ये दुनिया का इल्म है जो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और इसी बेस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में हुकूमत की है। तो इस्लाम में दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया के इल्म की भी वैल्यू है, उसकी नफी इस्लाम, उसकी नफी की आपको इस्लाम इजाजत नहीं देता। पैगंबरों को दिया अल्लाह ने, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पिघलाया करते थे, ये लोहे का पिघलाना दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है? दुनिया का इल्म है। अल्लाह पैगंबरों को वो चीज देगा ना जिसकी कोई फजीलत होगी। तो फरमाया हमसे कुछ नहीं जा रहा, हमें ये बताया जा रहा है, बल्कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनुल कवी अहब्बु इलल्लाह मिन अल मुमिन ज़ईफ, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, आप इकोनॉमिकली मजबूत हो, आप तालीम के लिहाज से मजबूत हो, किसी भी लिहाज से आप मजबूत होगे आप सोसाइटी में ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आप कमजोर होगे तो सोसाइटी में काम करने के बजाय सोसाइटी पर बोझ बनोगे। इसलिए अल्लाह को पावरफुल कमजोर से ज्यादा महबूब है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब सवाल एक पैदा होता है कि यार दुनिया कमानी भी है, पैसा भी कमाना है, बीवी बच्चे भी रखने हैं, कोई रहमानियत नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगलों में निकल जाएं, और दूसरी तरफ दिल लगाने पर अल्लाह की तरफ से पाबंदी। तो जब किसी चीज से मोहब्बत ही नहीं होगी उसको हासिल करने की कोशिश करेगा? बहुत मुश्किल है यार, मुझे भाई नहीं आ रहा है दिल में, बताओ ना। इस्लाम कहती है गैर फितरी की बात कर रहे हैं कि दिल दो टके एक तरह कह रहे, कोई दो टके की वैल्यू बोलो नहीं। दूसरे कह रहे थे उस्मान, हजरत उस्मान करोड़ों अरबों का बिजनेस, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, इतने महंगा उनका ताज था, इतना बड़ा तखत था, अगर मलका सभा उस तखत के प्रोटोकॉल को देख के पागल हो गई हो यार, इतना इतना आलीशान तखत, ऐसी लग्जरी लाइफ थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के पैगंबर थे। अगर लग्जरी लाइफ इस्लाम में या अल्लाह की नजर में हराम होगी तो क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की लग्जरी लाइफ हो सकती थी? ऐसा खूबसूरत तालाब बनाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, सॉरी तालाब नहीं, शीशे का फर्श, कि मलका सभा उसको देख के ये समझी कि ये पानी है। कशफत अन साकीहा, तो अपनी जो पिल्ली है ना उसको पानी से ऊपर कर ली कि पानी से ठीक रह जाऊं। قال انه صرح ممرض من قوارير, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी नहीं है, ये शीशा है। ऐसा खूबसूरत शीशा उस जमाने में जो देखने में पानी की लहरें लग रहा है। फौरन कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान पर मैंने बड़ा जुल्म किया, अज़लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल और ऐसी सलाहियतें अल्लाह किसी पैगंबर ही को दे सकता है, ये अपनी बाबत में बरहक है, अल्लाह मैं इनके साथ इनके दीन में दाखिल हो गई। तो आप कहते हैं हम हमें तो कोई होता वहां पे, हम कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम आप एक तरफ कहते दुनिया तो टकेगी नहीं है, क्योंकि मैं कभी रियो में घूमता हूँ ना गार्ड वार्ड में, पाकिस्तान में तो आपको पता है इस तरह के मसाइल बहुत है। तो लोग कहते हैं मैंने जब एक बात सुना ना, मैं मौके से मैंने तीसरी शादी की मदद के साथ तो अच्छा मेरे उस दिनों में बयान यही चलते थे दुनिया मुसाफिर खाना हर बयान में, मेरे माशाल्लाह बच्चे भी थे, यहाँ दूसरी जो पाबंदी है तो जरा किसी वकील से पूछ रहे ना कि कौन सा कानूनी तरीका है, ऐसा ना मुझे भी अंदर करवा दो। तो जर्मनी में सुना कि है कुछ मुसलमानों के लिए कुछ गुंजाइश है, कुछ तरीका कहा है, तो यहाँ भी पूछ लेना, मैं तो वहां के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैंने जब सीखा तो मैं हर वक्त दुनिया मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना, क्या हुआ है एक चीज जब मैंने तीसरी की, जैसा मेरी ये पहली शादी थी जो धूमधाम से हुई, वरना तो आपको पता है पकड़े जाने का खतरा होता है, क्योंकि मेरी सेकंड वाइफ राजी थी तो इसमें फिर सारे खानदान चला गया उस सदी के लिए। उन्होंने कहा जब ये राजी है तो चलो जाने दो। तो मेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी। अच्छा बच्चे मेरे सब लोग जानते थे, मुफ्ती साहब के बच्चे भी हैं, मुफ्ती साहब और बच्चे रहे नहीं, बच्चों के बाप हैं। तो जब एक बूढ़े मियां हमारे घर के करीब आए, किसी से पूछने लगे कि यार ये इतना रश क्यों है इनके घर के बाहर, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने शादी की, उससे भी ऐसे कांपने लगे। कांपते कांपते कहते हैं उधर मिंबर में बोलते हैं जैसे जैसे दुनिया मुसाफिर खाने हरकते देखो इनकी कहती है। उधर पहुंचते भी क्या है, हर बयान में मुसाफिर खाना बुरा हरकते देखो यार, शर्म नहीं आती तेरे बच्चों का बाप होते हुए काम करते हुए। अच्छा जिसको भी एतराज था ना, बगीचे में खाना खाने समाए या तो भाई तुम्हें एतराज है तो मैंने तो गली में बुलाया था ना, उससे ही एतराज कर रहे थे, मस्जिद नहीं गलीमा था तो उससे एतराज। हाँ फिर भी रहे हैं उससे में बातें भी कर रहे हैं, इनको देखो ये हरकतें देखो और खा रहा है, रोटी डाले कर रहा है, लेकर आ गया ये तो अब मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि सवाल पैदा होता है जब दुनिया कमाने की भी इजाजत दे दी तो दिल लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी? जब दिल ही नहीं लगेगा तो कमाएगा कैसे? हर वक्त क्या आखिरत का सोचता रहेगा? तो खूब समझ लो, अल्लाह मियां ने दुनिया से दिल लगाने को मना नहीं किया, अल्लाह ने कहा है कि इतना लगाओ जितना रहना है। समझते हो कि नहीं समझते? जहाँ जाना है उससे ज्यादा मोहब्बत करो। जो दोस्त वफादार होता है और एक दोस्त है टाइम पास करने के लिए, जो सफर में आपका साथी है, जहाँ डब्ल्यू ग्यारह नहीं है काश होती तो मजा आता, डब्ल्यू ग्यारह में आपके साथ बैठा हुआ है, उसने आपने उसके साथ उतरना है लालू खेत में या कहीं भी उतरना है तो आप उससे भी थोड़ा हेलो हाई कर लेते हैं, और भाई क्या है थोड़ा सा गपशप लगा लिया आपने उससे, तो गपशप के बाद ये अफगानियों के समझ में आएगा जो यहाँ बैठे हुए हैं ना अफगानिस्तान वाले, देहत और ये उनकी पश्तू है, पिशावर वालों से मैंने कहा देहत मेहत चलानी पड़े तो उस वक्त क्या बोला भाई तुम्हें, ये अफगानी पश्तू है कोटा वाली, माशाल्लाह यहाँ अफगानी बहुत है और बड़े मोहब्बत से मिले हैं, अल्लाह इनको जजाज कर दे। जैसे ही ये स्टेशन से बाहर आया ना तो वो माशाल्लाह इतने अफगानी, वो भी कहाँ से भी अफगानिस्तान से, वो भी कहाँ से भी अफगानिस्तान से, बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह जजाज कर दे आप लोगों को। तो अल्लाह मियां ने कहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले लोग हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बाकी मोहब्बतों से ज्यादा है। क्या मतलब? अल्लाह मियां ने हमें इस दुनिया से ये नहीं कहा कि बिल्कुल दिल न लगे, बिल्कुल दिल नहीं लगाएंगे तो दुनिया हमारी क्या हो जाएगी, मजे कैसे हो जाएंगे, न सभी कबाब का मजा आएगा है भाई, न नली निहारी का मजा आएगा आपके सामने, चपली कबाब आया ना मिसबार का मजा ना गुटके का मजा, चपली कबाब आया आप दावत है खुशबू आ रही लगते हैं दिल नहीं लगाना है तो टके का कबाब ले। तो क्या मजा आएगा खाने में यार, भाई जब नेमत आती है इंसान कहते हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत के पेरिस में चपली कबाब मिल गए, और क्या चाहिए भाई, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो रब्बत से खाएगा ना अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि दिल बिल्कुल नहीं लगाना, ये लोग कहते हैं ना दिल नहीं लगाना, क्या मतलब? आखिरत के मुकाबले में जहां मुकाबला हो अल्लाह का और दुनिया का, आखिरत का और दुनिया का, जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो फिर किसको तरजीह देनी है? अल्लाह को। बुद्धि में मिसालों से बात समझा के बयान खत्म करता हूं। देखो मैंने बताया था ना एक दोस्त होता है जो वक्ती तौर पर आपको हंडीवाल बन जाता है, स्वीट में साथ बैठा हुआ है और थोड़ा सा सफर है और एक वफादार होता है, तो जब दोनों में टकराव होगा तो किसको तरजीह दोगे? जो वफादार दोस्त उसको तरजीह दोगे ना। आपके दो दोस्त थे, आपको दोनों से बे इंतहा मोहब्बत थी, बाकी मोहब्बत थी आपको दोनों से, दोनों ने आपको ये आजमाया कि हम दोनों में इसके दिल में किसकी मोहब्बत दूसरे से ज्यादा है। आपने इसको भी कहा भाई वसीम को बोला उससे मुझे जितनी मोहब्बत है इतनी किसी से नहीं, सत्तार भाई को भी आपने यही बोला यार तू मेरा जिगरी दोस्त है, मुझे मैं ये अक्सर दो बीवियों की मिसाल देता हूँ लेकिन खवातीन बहुत नाराज हो जाएंगी, वो वाली मिसाल मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, बहुत सारी खवातीन बयान में आई है तो उनका ख्याल करना पड़ता है मुझे, ठीक है ना, तो वो नहीं दूंगा मैं मिसाल, ठीक है, मैं दो दोस्तों की मिसाल दूंगा। वो ज्यादा समझ में आने वाली है, लेकिन छोड़ो अभी यार मतलब मजा ले रहे हैं खान का। अब दो दोस्त हैं आपके, दोनों कह रहे हैं यार, दोनों ने ना आजमाया कि यार देखें इसके दिल में हम दोनों में से किसकी मोहब्बत ज्यादा है। दोनों ने क्या किया, इतवार वाले दिन संडे वाले दिन लंच का कह दिया आपको। पहले वसीम भाई आए, उनसे उन्होंने बोला कि यार दोपहर 12 बजे लंच आपने मेरे साथ करना है, और अगर आपने नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाऊंगा। इधर सरकार भाई आए, पहले से ये प्लान बना के बैठे हुए थे, इन्होंने आके कहा यार तुमने दोपहर संडे वाले दिन 12 बजे लंच मेरे साथ करना है, नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए नाराज। तो आप चटपटाओगे कि चटपटाओगे? देखो अगर ये एक लंच का कहता है डिनर का कहता है तो मोहब्बत आपको दोनों से है, उधर लंच कर लेते उधर डिनर कर लेते, मोहब्बत दोनों से है ना, तो बड़े आराम से मसला हल हो जाता। लेकिन दोनों इम्तिहान लेने के लिए बैठे हुए हैं, आप बड़े चटपटाओगे, आप क्या करोगे यार, बहुत जब कुछ नहीं बनेगा ना आपसे, आप कहोगे चल इधर 12 बजे लंच उधर 1 बजे, आप कहोगे डबल खा के पेट खराब होने का इलाज है, लेकिन दोनों में से एक रूठ गया उसको मनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो दोनों तो ठान के बैठे थे यार इसका इम्तिहान ले रहे हैं। दोनों ने कहा भाई 12 ही बजे, 1 मिनट भी आगे पीछे होने की इजाजत नहीं है। अब जब कंपेयर होगा ना, कंपटीशन हो गया, दोनों की मोहब्बत में तकाबुल हो गया, इस मौके पर आप उसको तरजीह दोगे जिसकी मोहब्बत 0.00001% आपके दिल में ज्यादा है। अल्लाह मियां ने हमें इजाजत दी, हलाल दुनिया जितनी कमा सकते हो कमाओ, ठीक है ना, खाओ पियो। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے ان پاکیزہ نعمتوں کو اور اس زینت کو میرے بندوں پہ حرام کر دیا، کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں لاؤ نا، کون ہے جس نے ریموں میں بیٹھنے کو حرام کیا، جو مفتی طارق مسعود پر اعتراض کرتا ہے کہ گاڑی میں چترال جا رہے ہیں، پیرس جا رہے ہیں، اٹلی جا رہے ہیں، کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں لاؤ نا مارکیٹ میں، میں نے جب بنائی ہے تو جام رہی جائے، اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں نا، چوری کر کے تو نہیں جا رہے نا۔ تو اچھا اپنے خرچے پہ پھر ایک نیا ہے، یہ ہماری قوم ایک ہی کلپ نکالتی ہے اپنے خرچہ، سمجھتے تھے کسی نے اسپانسر کیا ہے تو اور بڑا مسئلہ، اسپانسر کے خرچے پہ جا رہے ہیں تو اسپانسر جانے میں جانوں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اتنے اعتراضات، اتنی نیگیٹیوٹی۔ چوری کے پیسے الحمدللہ نہیں ہے، نہ چندے کے پیسے ہیں، نہ چوری کے ہیں نہ چندے کے، حلال ہیں۔ اب آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ کو اتنی نہیں ہوتی، ہمارے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، آپ بھی ہماری لوگوں سے جوہار رہتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا، کون پابندی لگا سکتا ہے؟ وہ طیبات میرا رزق، کھانے پینے کی نلی نہاری کھاؤ بھائی، برگر کھاؤ، دال چاول کھاؤ، پیاز کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، کبلی کباب کھاؤ، چھوڑ کر دی حلال کھاؤ یار، کس نے پابندی رہے؟ اللہ کہہ رہے کون ہے، کہتا ہے وہ بندہ تو لاؤ بولے ہمارا غصے میں نہیں آدمی آ جاتا، کون ہے جو پابندی لگا رہا ہے؟ دیکھو باپ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا سا کھانا تیار کر کے رکھے یا کوئی گفٹ دے، بیٹا کہے ابو وہ مجھے وسیم انکل نے منع کیا، ابا سے کوئی گفٹ نہیں لینا، باپ کہہ رہے تو یار میرے مقابلے میں کون ہے، ارے تیرا باپ میں تجھے دے رہا ہوں، کون ہے جس کی ویلیو تیری نظر میں مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ تو لا رہا ہے مارکیٹ میں، بزنس کو بولو نا چھوڑ دینا، जमात से नमाज पढ़नी है, अक्ल तरीके से इस्लाम में नमाज नहीं होती है। हाँ कहीं सफर में कोई टेंशन में वो जल्दबाजी है कहीं पहुंचना, वो गलत बात है, जहाज भी चल जाएगा जमात के चक्कर में। वो एक स्टेशन पे हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, ट्रेन पों पों बजा रही और इमाम साहब खुशू वो खुशू थे ना, कोई ये तो गलत है ना, हम जल्दी से नमाज पढ़ाओ भाई। एक एक करके लोग पीछे से खिसकना शुरू हो गए। तो नमाज नहीं छोड़नी है, समझ रहे नहीं समझ रहे, हराम नहीं कमाना है। आप अपने क्लाइंट को झूठ बोल के माल बेच सकते हो, उसमें ज्यादा बिकेगा, सच बोलोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। यहां दुनिया और आखिरत आपस में टकरा रही है, आपने सच बोलना है कम कमाना है, झूठ जो ज्यादा लेकर आएगा उसको तरजीह बोलो नहीं है। एक आपकी बीवी है, एक आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों में मुकाबला हो रहा है। अल्लाह क्या कहता है, बीवी कितनी ही बदसूरत हो और गर्लफ्रेंड कितनी ही खूबसूरत हो, मोहब्बत गर्लफ्रेंड से करनी है बीवी से करनी है? ना वो मजा नहीं आया जैसे अभी आ रहा है, ऐसा ठिठक नहीं है, लग रहा है कि कोई हाथ डाल के अल्फाज खींचे नहीं आ रहे। बीवी से मोहब्बत पैगंबरों की सुन्नत है, गर्लफ्रेंड का इस्लाम में कोई तसव्वुर
नहीं
है। देखो इनका जो यहां गैर मुस्लिम है उनका मजहब उनके लिए, उनको नहीं छेड़ो, समझ में आ रही है बात, उनको नहीं छेड़ो कि गर्लफ्रेंड तेरी क्यों है भाई, वो जाने, वो कह सकता है भाई मेरे मजहब में नहीं है, मेरे कल्चर में, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अगर इस्लाम को, आप अपने आप को मुस्लिम कह के आए ना यहां पे, तो इस्लाम में तो नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड है इस्लाम में धीरे से मोहब्बत करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कैसे मोहब्बत करते थे, जिस जगह अम्मी आयशा बर्तन में मुंह लगा के पानी पी रही हैं, आप बर्तन घुमा के उसी जगह से पानी पिया करते थे। ये मोहब्बत का इजहार किससे हो रहा है, अपनी बीवी से हो रहा है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आया करते थे। मैं तो फोन उठाने कम कर दिए, पहले बहुत कॉल उठाया करता था मैं, तो बेशतर खवातीन की कॉल आती थी, हमारा मियां कराची की बात, और लाहौर में गटर के ढक्कन होते हैं, लाहौर में तो कम हो गए, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह यानी ढक्कन लाहौर में ठके हुए होते हैं, हमारे यहां थोड़ा सा हम लाहौर से थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हैं अभी कराची वाले। तो कितनी खवातीन की कॉल आती थी कि हमारा मियां दोस्तों में बैठा होगा गटर के ढक्कन के, पूरी पूरी रात बैठ के हा हा हू हंसी मजाक चल रहा है, तंबाकू के गुटके के तबादले भी हो रहे हैं, गपशप भी हो रही है, जैसे ही जब घर में आता है ऐसा लगता है हलाकू खान ने बाजार पे हमला कर दिया। ये तो अल्फाज मेरे उनके नहीं होते, लेकिन स्टाइल ये ऐसा घर में आता है जैसे चंगेज खान और हलाकू खान ने बाजार पे क्या कर दिया है, घर में आते हैं कभी इससे बात ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आया करते तो कैसे अखलाक, जब ज़ौजा ने कभी बदअखलाकी की, बदअखलाकी तो उसे ताबीर नहीं करेंगे, उसको कभी हो जाता है मियां बीवी में ना, तो हमारे नबी का एटीट्यूड क्या था। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में, हमने वो मस्जिद नबी में जगह देखी, मैं वहां जाता हूँ, मेरे ध्यान में पूरा मस्जिद नबी का वो मंजर आता है, रियाजुल जन्ना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं, हजरत जैनब ने हलवा बना के भेजा, बारी हजरत आयशा की है, हजरत आयशा को गुस्सा आया कि बारी मेरी है और मुदाखलत किसी और की, गुस्से में हजरत आयशा ने वो हलवे का बर्तन उठा के जमीन से मार के दो टुकड़े कर दिए उसके। अब बताओ मैं और आप होते, हम अपने दोस्तों को ये वाक्य सुना रहे होते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सामने बर्तन तोड़ा, मैंने रख के चंबा लगाया, होता कि नहीं होता स्टाइल बताओ ना, दोस्त की गैरत दिला रहे होते हैं, तूने एक थप्पड़ लगाया मैं होता छह थप्पड़ खींचते, तू जोरू का गुलाम है, डरता है साला बीवी से, मैं तो नहीं डरता। ये वाकया दोस्तों में ना, तो मेरी बेगम ने मेरे सामने, मैं किसने ग्रेड का ऑफिसर हूं यार, मैं किसने ग्रेड का ऑफिसर हूं यार, मेरे सामने उसने बर्तन तोड़ा, मैंने रख के बोलो ये स्टाइल है। एक तो रजापंजी दिखा रहा है, ऊपर से इसको फखर भी कर रहा है। हमारे नबी के क्या अखलाक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक लकीर भी नहीं आई है, आपने सहाबा अच्छा ये काम भी सहाबा के सामने हुआ है, ऐसे में तो आदमी और जहरत में आता है कि मेरे यानी मेरी जहरत मेरे दोस्तों के सामने मेरी मुझे दलील कर दिया। सैयदुल अंबिया से ज्यादा किसी का मकाम हो सकता है? सारे पैगंबरों के सरदार खातमुन नबीहीन इतने बड़े पैगंबर उनके सामने ये हो रहा है, दोस्तों के सामने अहाब के सामने भी आपने गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि उस अमल की एक अच्छी लॉजिक पेश की। लॉजिक क्या पेश की? गार उम्मकुम, फरमाया तुम्हारी मां को गैरत आ गई है, मोहब्बत ने किया है, गैरत ने किया है कि भाई मैं मेरी बारी है तो मेरा मियां इस वक्त मेरा है, किसी और को अपनी तरफ तवज्जो ले जाने की जरूरत, तो गैरत में तो ऐसे ही काम होते हैं ना। क्या हो गया भाई, क्यों समझ नहीं आ रहा? आसान बात तो करो। तो आपने उसकी एक अच्छी लॉजिक पेश की है कि भाई गैरत गैरत का तो यही तकाजा होता है कि जब मेरी बारी है तो भाई दूसरी टोकन की मुदाखलत क्यों हो रही, जरा भी गुस्सा नहीं हो। लेकिन इंसाफ का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। बर्तन हजरत जैनब का था, जब मम्मी आयशा का गुस्सा ठंडा हुआ आपने बर्तन उठाया और फरमाया कि इसके पैसे जैनब को। यानी ऐसा भी नहीं है कि अम्मी आयशा की मोहब्बत में किसी पे जुल्म है, बर्तन उनका तो पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शौक चल रहे हैं। और वो समझ लो अल्लाह की नजर में जैसे दुनिया में मार्केट में जो चीज शॉर्ट होती है वैल्यू उसी की ज्यादा। हमें बहुत दफा ऐसा हुआ ना चीनी मार्केट से शॉर्ट हुई है तो कितनी महंगी मिलती थी चीनी से, कितनी महंगी मिलती थी ना, तो जो चीज शॉर्ट होगी वैल्यू उसी की बढ़ेगी। तो अखलाक मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं। और मैं तो इतने अच्छे अच्छे अखलाक की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, असल में मेरे घर वाले सुन रहे हो, बात में यूट्यूब में मेरे घर वाले भी सुन रहे हैं, वहां तो कोई कोई और इस है वहां तो ऐसा लग रहा है सिस्टम यहाँ मार्केट में है ही नहीं। तो भाई हम भी सारे यही गोश्त खाते हैं, जो रोटियां खाते हैं, हम भी आड़े दिन से चलते रहते हैं, लेकिन आदमी बात तो अच्छी करे ना। मुझे अपने लिए भी कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मेरे भी अच्छे अखलाक कर दे, हमारे भी अल्लाह अच्छे अखलाक कर दे। तो मैं तो सीखने के लिए, मैं तो कभी दावा मैंने किया ही नहीं है, लिहाजा मैं घर वालों अगर सुन भी रहे तो भाई हमको सीखने के लिए करने बात। तो तकलीफ वाले कहते हैं ना सीखते सीखते ही, जो कह रहे हैं भाई हम सब सीखने वाले हैं, जब इंसान ये फर्ज कर लेते हैं ना हम सब सीखने वाले हैं तो फिर मसला ही, फिर कोई मसला ही है। तो अल्लाह जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा, हमने तरजीह किसको देना है मेरे भाई, अल्लाह। तो अल्लाह जिना की इजाजत, जो मोहब्बत गर्लफ्रेंड से करनी थी वो सारी किससे करो, और जब दिमाग में शैतान मस्ते से डाला करे ना कि दीवार ये इतनी सारी तितलियां मार्केट में घूम रही हैं, अपनी हवेली को देखो, उनको देखो कैसी हैं वो, ये इतनी पता नहीं क्या आ गई। तो हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि शुक्र का जज्बा जब ही पैदा होगा जब इंसान ये समझे कि अल्लाह ने मेरे लिए जिसका इंतखाब किया अल्लाह के इल्म में मेरे लिए उससे ज्यादा बेहतर कोई था ही वो है, जितनी भी हसीना है मेरे लिए नहीं है। भाई मेरे लिए कौन है? देखो आपके बाप और आपकी माँ आपके लिए सबसे ज्यादा मोहसिन आपके माँ बाप है या नहीं है? बाद नौजवान मेरे पास आते कहते हैं और पढ़ाने के अब्बा ने अपने बच्चे के लिए ये किया और पढ़ाने की अम्मा ने अपने बच्चे के लिए, मेरा अब्बा तो गरीब ना मेरे लिए। पंजाबी में कहते हैं ऐसा अब्बा अब्बा कहाँ से लपा कहते हैं ऐसा पंजाब। तो उनको ये होता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ देखो ये सोच लिया करो कि मेरे जो फादर है ना मेरे जो बाप है अल्लाह के इल्म में इससे बेहतर शब्द मेरे लिए कोई नहीं, वो दूसरे का होगा उसके लिए होगा, मेरे लिए सबसे बेहतर कौन है? ये जो माँ है ना मेरी, मेरे लिए सबसे बेहतर अल्लाह ने जो कहा ना वला तकुल्लहुमा उफ्फिन, माँ बाप के सामने उफ नहीं करना, ये दूसरे के अम्मा अब्बा के बारे में नहीं कहा, उसके अम्मा अब्बा उसके औलाद के लिए जितने भी अच्छे हो उफ बोलने पर आपको पाबंदी है कि आप अपने बाप और माँ के सामने उफ नहीं बोल सकते। तो अल्लाह ने हमारे लिए दूसरे के अब्बा अम्मा के नहीं, हमें हमारे लिए हमारे अब्बा अम्मा के हुकूक बयान किए हैं, समझते हो? दूसरों की बीवियों के हमारे लिए हुकूक नहीं, हमारे लिए अपनी बीवियों के हुकूक है। मैं अक्सर एयर होस्टेस के अखलाक की मिसाल देता हूँ, एयर होस्टेस के अखलाक कितने अच्छे होते हैं, बटन दबाओ फौरन आती है कि नहीं आती है। ये एयर होस्टेसों ने भी मेरे बयान सुने, मुझे बता रही होती है एयरपोर्ट पे कि आप बात बिल्कुल ठीक किया आपने, बटन दबाओ फौरन आ जाएगी और थैंक यू से बात शुरू करेगी, थैंक यू पे बात खत्म करेगी। यही एयर होस्टेस जब इसके अब्बा बुलाएंगे बटन पे पाँव रख के खड़े हो जाएंगे आएगी वो
बहुत सी आते हैं जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो भाई सबसे पहले कौन है? अब्बा अम्मा, इनका हक। और आपके अब्बा वसीम भाई के अब्बा नहीं, आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपका अब्बा। आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपकी माँ। हमेशा इंसान उल्टा सोच रहा होता है, अपने अब्बा को वसीम भाई के अब्बा से कंपेयर कर रहे हैं, अपनी अम्मा को फलाने की अम्मा से, अपनी बीवी को फलाने की बीवी से, यार उसकी बीवी तो इतनी अच्छी है, मेरी वाली क्या मिल रही। भाई ये जब सोचोगे तो कभी भी शुगर की कॉफी नहीं मिलेगी, कभी भी शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने दुनिया दे दी, आप ये फर्ज कर लो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं। तो दुनिया और आखिरत में जहां टकराव होगा मेरे भाई, तरजीह किसको देनी है? आखिरत को। ये अल्लाह का हमसे मुतालबा है। अच्छा, अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल करके ना, उसमें जो अस्बाब रहते हैं, चंद बातें जल्दी जल्दी पहले आपको कह दूं। देखो, आप गैर मुस्लिम रियासत में रहते हो, चंद काम आपने करने हैं, फिर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आता हूँ। वाकई में जो अस्बाब मिलते हैं, नमाज आप में से कभी भी किसी ने नहीं छोड़ोगे। अगर आप यहाँ मजहब से रिश्ता नहीं रखोगे तो याद रखो, फिर आप मजहब से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाओ। अल्लाह मियां ने जो हमें पांच नमाजें जमात से पढ़ने का हुक्म दिया, इसमें अल्लाह का हमसे बहुत बड़ा एहसान। इसमें आपस में गैदरिंग रहेगी आपकी, तबलीग में वक्त लगाया करो कुछ। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में काबिल कबूल है, कोई ऐसी दावत नहीं देते जिससे कोई वायलेंस फैल रही हो, कोई शिद्दत पसंदी फैल रही हो, कोई मार धाड़ की बात कभी सुनी आपने? मोहब्बत से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पूरी दुनिया। तो आप अपना ताल्लुक जमात से क्या करो, यहाँ मस्जिद में आओ, यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, ये इंडिया से आए हैं, ये भी इंडिया से आए हैं, गुजरात के हैं। मैंने गुजराती लोग दुनिया में जहां भी गया हूँ ना, बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने उनसे काम लिया है, मदारिस और मस्जिदों में बड़ा पैसा लगाया है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे। तो सैरोजे के लिए कभी निकल जाया करो, कभी 40 दिन के लिए निकल जाया करो, थोड़ा सा अच्छे माहौल में बैठने की आदत पड़ जाएगी। देखो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान कबलकुम रजुल कतल 99 नफ्सन फसअल अन आलम अहलिल अर्ض फदल अला राहिबिन फअताहु फकाल इन्नहु कतल 99 नफ्सन फहल लहु मिन तौबा قال لا। हदीस में आता है, एक शख्स ने, जल्दी जल्दी हदीस को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, नबी ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों का कत्ल किया। कत्ल अच्छा काम है बुरा काम है? बताओ, इस्लाम में कत्ल से बड़ा कोई जुर्म है? किसी गुनाह पर अल्लाह ने हमेशा जहन्नम में रहने की वईद नहीं सुनाई है। इंसानी जान का कत्ल ऐसा जुर्म है जिससे अल्लाह ने हमेशा जहन्नम की आग में जलने की वईद सुनाई है, हमेशा के लिए, इतना बड़ा जुर्म। और उसने 99 इंसानों को कत्ल किया। लोगों से पूछा, मुझे किसी आलिम का पता बताओ, लोगों ने एक राहिब का बता दिया जिसके पास इल्म नहीं था, इबादत गुजार तो था, इल्म नहीं था। जब राहिब के पास आया और कहा मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया, क्या तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा 99 की नहीं होती। उसने कहा जब नहीं होती तो सेंचुरी पूरी करो ना भाई। उसने उसको भी मार दिया। क्या जब आग नहीं जलना है आखिरत में तो फिर 100 बंदे मार के जाओ? लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इंसानी जान का कत्ल अच्छा काम नहीं है। हदीस में आता है वो आलिम के पास आया। इस दफा लोगों ने उसको किसका पता बताया? आलिम दीन का। वो आलिम दीन के पास आया। ये वाकया है ईसाई दौर का, इस्लाम से पहले का। उस वक्त जो ईसाई राहिब हुआ करते थे, ईसाई उलमा हुआ करते थे, तो क्योंकि आसमानी मजहब था ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहब मजहब लेकर आए, तो वो उनके पास जाके कहने लगा कि मैंने 100 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा मैं यकूल बही न तौबा, भला अल्लाह और बंदे के दरमियान, तौबा के दरमियान कौन सी चीज रुकावट हो सकती है? तो अल्लाह से माफी मांग रहा है, कोई कौन रुकावट है? लेकिन तेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन वो आलिम थे, उन्होंने मसला भी बताया कि तौबा भी कर, और तौबा पर कायम रहने का तरीका भी बताया। सिर्फ तौबा करा लेना काफी नहीं है, तौबा पे कायम रखना ये भी जरूरी है। तो आलिम ने क्या बताया कि तौबा पर कायम रहने का क्या तरीका है? इन तलिक इला अर्दिन कदा व कदा فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم فلا صلاة زمین میں چلا جا ولا ترجع الى ارضك اپنی زمین میں واپس لوٹ کے مت آنا فإنها ارض سوء اس زمین میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے جس زمین میں گناہ کرنا سیکھتا ہے انسان وہاں گناہ سے توبہ پہ قائم رہنا مشکل فلا سر زمین چلا جا وہاں نیک لوگ رہتے ہیں اور ولا ترجع واپس نہ آنا
उस जमीन में जाके रहना तौबा करके, क्या मतलब वो आलिम उसका माहौल चेंज कर रहे हैं, नेक लोगों में रहेगा तो तौबा के नाए रहेगा। आज रूए जमीन में मेरे इल्म में कोई ऐसी जगह नहीं है, अगर जगह है भी तो वहां कोई आपको घुसने नहीं देगा कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने किसी जमीन में गुनाह सीखे तो आप फलाने मुल्क में चले जाए। ना 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 ना, अब चलते फिरते मुल्क है तो तबलीगी जमात एक चलती फिरती चलता फिरता कंट्री है, चलता फिरता माहौल है। उन आलिम ने बता दिया कि बुराई छोड़ने के लिए माहौल का तब्दील करना जरूरी है। तबलीग में आप निकलोगे चार महीने के लिए आपको कोई शराब की बोतल बोलो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है चंद पीने को मिले आपको वहां पे, कोई बेहयाई नहीं है। चार महीने 40 दिन सहरोजा जब आप अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, इबादत करोगे, इंसानियत की भलाई और जोड़ की बात करोगे तो आपके अंदर जोड़ का जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर बुराई से नफरत पैदा होगी। इसलिए मैं इन मुल्कों में खास तौर पे आप लोगों से कहता हूँ कि वहां भी जरूरी है लेकिन यहाँ यहाँ भी जरूरी है कि अपना ताल्लुक कबीले वालों से बोलो मजबूत करो, कोशिश करो कि नहीं करो नमाज की पाबंदी और तबलीग में जोड़ना। और एक और बात, सहारत खर्च करो, टैक्स चोरी मत करो। मुसलमान कंजूस होता है या सफी होता है? जितना टैक्स बनता है उतना दो, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के इनसे खर्च करो। गैर मुस्लिम पे सदका करने का पूरा पूरा सवाब मिलता है। ज़कात के लिए इस्लाम ने शर्त लगाई है कि मुसलमान को दे सकते हैं, उसके अलावा जितने सदकात हैं वो गैर मुस्लिमों को भी बोलो दिए जा सकते हैं। कुरान क्या कहता है, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, हमारे नेक बंदे अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने वाले बनो, इस सोसाइटी पे आप उल्टा बोझ मत बनो। मुझे यहाँ का नहीं पता, उसके लिए मैं गया, बेरोजगारों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, बहुत सारे ढूंढने बन के बेरोजगार बने हैं वहां, और छप्पड़ के जॉब भी कर रहे हैं। यहां पर नहीं, यहां तो सारे नेक लोग हैं। तो भाई ये तो गलत गैरत के खिलाफ है या नहीं है? मुसलमान का हाथ लेने वाला होता है, देने वाला होता है, देने वाला होता है। ढूंढने बने हुए बेरोजगार अपने पेड़े खा रहे बैठ गए और फिर छप्पड़ में जॉब भी कर रहे हैं। भाई आप क्यों इस सोसाइटी में बोझ बोलो? इन लोगों ने यहाँ पर एहसान करके आपको यहाँ ठिकाना दिया, आपको यहाँ मतलब इस फॉलर आके यहाँ खुलेआम तकरीर कर रहा है, हालांकि इनका रियासत का स्टेट का मतलब इस्लाम नहीं, इन्होंने आपको इजाजत दी है, आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी, आपको रोजा रखने की इजाजत दी। तो इस एहसान का तकाजा क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहसान फरामोशी की, एहसान का बदला दिया मिस्र में, एहसान का बदला दिया मिस्र की इकोनॉमी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे स्ट्रगल किया है। आपको भी यहाँ इनके एहसान का बदला देना है। वह एहसान का बदला यह है कि इस सोसाइटी पे आपने बोझ नहीं बनना, देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? खोपड़ी शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो बेरोजगार बन के पैसे ले रहे हैं, कल से रोजगार शुरू करके अनाउंस कर दें, गवर्नमेंट छुप छप्पड़ में ना करें, गवर्नमेंट को बता दें कि भाई हमने जॉब ढूंढ लिए, हमें अब फ्री के पैसे नहीं चाहिए, फिर भी दे दो, फिर फिर दे रही है, ठीक है, वैसे देख ही नहीं जहां तक मुझे रिपोर्ट है। तो अब मैं जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक्य बता के ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक्य में मैं क्या बात नहीं है। तो पहली बात तो ये, अच्छा एक और बात, झूठ मत बोलो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया, भाई वक्त है ना कुछ या जल्दी से खत्म करना? अच्छा नहीं, मुझे आप लोग बताते हैं हो गए अच्छा, फिर तो मुझे दो चार मिनट और ले, मेरे दो चार मिनट थोड़े लंबे होते हैं। एक मिनट जो है वो 120 सेकंड का होता है और सेकंड भी फिर आगे बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन खैर कोशिश करूंगा 5 मिनट में बात करने की। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह, बल्कि इससे पहले मैं शुरू करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का दावा किया, 40 साल आपकी एज हुई, आपने लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। दलील के तौर पर आपके पास दो ऑप्शन थे, एक अपनी इबादत को पेश करने का ऑप्शन, जो आप हमारे हिरा में हमेशा से करते रहे, एक ऑप्शन अपने कैरेक्टर को पेश करने का, तो आपने कौन सा वाला ऑप्शन इख्तियार किया? कैरेक्टर में। आपने ये नहीं कहा लोगों में गारे हिरा में इतने साल इबादत करता रहा हूँ लिहाजा मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, इबादत गुजार झूठ भी बोल सकता है। आपने फरमाया मैं सादिक भी हूँ और अमीन, क्या मतलब? मैं खयानत नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा। 40 साल में तुमने मेरी जबान से कभी गलत बयानी नहीं सुनी, कभी खयानत नहीं की, किसी ने मेरे पास अमानत रखवाई हो और मैंने उसमें गड़बड़ की हो, 40 साल में नहीं। तो याद रखो गैर मुस्लिम आपकी इबादत से मुतासर नहीं होगा, आपके कैरेक्टर से मुतासर होगा। वो मैं समझा पा रहा हूं, अब आप कहोगे हमें मुतासर करके करना क्या है? हमने मुतासर करके बोलो करना क्या है, क्यों करें मुतासर? आप कि अगर कैरेक्टर खराब हुआ ना और वो इस्लाम से बदगुमान हुआ तो आपके डबल चित्रौन लगेंगे कयामत के दिन, ये मसला होगा। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में जो लेबल इस्लाम का लगा हुआ हो और अपने किरदार से लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं उनके बारे में फरमाएं ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं। मैं ऐसे गैर मुस्लिमों को जानता हूँ, इस्लाम कबूल किया, मुसलमान ताजिर से मामला हुआ, उस ताजिर ने दो नंबरी की और इसने इस्लाम को छोड़ दिया। यार मुसलमान ऐसे होते हैं। और नबी ने अपने अमल से बताया, अपने अमल की एक हदीस सुनाता हूं। सुलह हुदैबिया में हजरत अबू जुंदल, सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन मक्का के साथ एग्रीमेंट हुआ। जब एग्रीमेंट हुआ थोड़ी सी शायद मुझे मिल जाएगी सवाल जवाब के सेशन, तो जब ध्यान खत्म करके तो सवाल जवाब का सेशन होगा जैसे भी बनाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से एग्रीमेंट किया, वायदा किया। वायदा क्या हुआ था कि वहां से जो मुसलमान होकर हमारी तरफ आएगा हम उसको वापस भेज देंगे, यहां से जो काफिर होकर उधर जाएगा तुम उसको वापस बोलो नहीं भेजना। ये शर्त मुसलमानों के खिलाफ जा रही थी कि नहीं जा रही थी? लेकिन जब एग्रीमेंट कर लिया अगर से अपने आगे तो आपने उस एग्रीमेंट को पूरा किया है। अभी इस एग्रीमेंट के दस्तखत नहीं हुए कि उधर से अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन पर मुशरिकीन मक्का बहुत जुल्म कर रहे थे वो यहां फरार होकर आए, हुदैबिया में नबी से पनाह मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना आदमी गैर कौम के हवाले कर देना जबकि पता है कि ये जुल्म करेंगे, कितना मुश्किल काम है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गैर वाले पैगंबर के लिए। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट हो चुका है आपने फरमाया कि नहीं हम वायदों की खिलाफ वर्जी बोलो नहीं। ये तो चीज थी जो अरब को अट्रैक्ट कर रही थी, हमारे वायदे जब हमारे हक में जा रहे होते हैं तो एग्रीमेंट की हम पूरी पूरी पाबंदी करें, जब हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो एग्रीमेंट की धजियां उड़ाकर फेंक दी जाती है। तो इसको कहते हैं दो नंबर कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड बोलो हाँ क्या जा रहे हैं। जैसी शादी की बात आती है एकदम तो मुसलमान को बात कर रहा हूँ तभी सीधो रिस्पॉन्स ही था। तो आपका एटीट्यूड इन मुल्कों में ऐसा होना चाहिए कि गोरे कहें कि मुसलमान कैरेक्टर में क्या होता है, एक वो जब एग्रीमेंट करता है गवर्नमेंट से करे या किसी क्लाइंट से करे या किसी बिजनेस पार्टनर से करे तो इसके अगेंस्ट जा रहा हो या इसके हक में जा रहा हो दोनों सूरतों में एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। कुरान में अहले जन्नत की जहां भी सिफत बयान की गई है अल्लाह ने फरमाया कि ये वला यनकुजून अल मीसाक, ये लोग वायदों को नहीं तोड़ते। अब मैं जल्दी से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले असबाब बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ क्योंकि वो उन रियासतों के लिए जो गैर मुस्लिम स्टेट में रहते हैं उसमें हमारे लिए इस सूरत के बड़े असबाब हैं। बात तो बहुत लंबी लेकिन मैं 2-3 पॉइंट मोटे मोटे हाईलाइट करूंगा। पहली बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नहु रब्बी अजीज मिसर, जो गैर मुस्लिम बादशाह था गैर मुस्लिम एक ओहदेदार था इसने मुझ पर एहसाना किए हैं मैं इसकी बीवी पर हाथ नहीं डाल सकता अगर से इसकी बीवी की तरफ से ऑफर है लेकिन मैं ये खयानत। देखो यहां सवाल पैदा होता है कि अगर अजीज मिसर दिल पर राजी होगा तो फिर भी अल्लाह की तरफ से तो हराम था ना देना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं किया, कहा कि अल्लाह ने हराम किया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा इस तरफ, ये क्यों नहीं कहा? पैगंबर तो पहले अल्लाह को देखते हैं ना, हमें समझाने के लिए कि अल्लाह को तो देखना ही है, मखलूक का भी हक है चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो हमें समझाने के लिए, वरना तो जिना तो हमेशा से हराम है, पैगंबर तो जिना के करीब कभी भी नहीं भटकते, हमें समझाने के लिए कि एहसान चाहे गैर मुस्लिम ने भी किया हो तो आपको उस एहसान का बदला एहसान की सूरत में ही देना पड़ेगा। और दूसरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस एहसान का तस्करा किया, अहसना मसवाया, इन्होंने मुझे अच्छा ठिकाना दिया है, ये नहीं कहते मुझे रोटी अच्छी खिलाई है, वो भी खिलाई होगी, ठिकाना, ठिकाने की बड़ी वैल्यू है, किसी स्टेट में आपको अच्छा ठिकाना मिल गया तो ये अल्लाह की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका एहसान ये बहुत बड़ा एहसान है। आज मुसलमान के साथ मसला ये है कि इसको कहीं आजादी मिलती है तो कुछ जज्बाती लोग उस आजादी का नजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और उसे इस्लाम के लेवल लगा देते हैं, फिर जब पाबंदियां लगना शुरू होती है तो कहते हैं यार ये देखो ये इस्लाम के दुश्मन है, उन्होंने आपको तो पहले, मैं थाईलैंड गया वहां अजान की इजाजत दी उन्होंने कि बाद लोगों ने 6-6 स्पीकर लगा दिए और रोड तक स्पीकर स्पीकर जा रहे हैं, मैंने उन लोगों से कहा यार इन लोगों ने तुम्हें इजाजत दे दी कि सभाओं में अल्लाह का नाम के पूजने की, हालांकि इनका मजहब इस्लाम नहीं है, ये तो बुद्धिस्ट है वहां, तो अब तुम उसका नजायज फायदा उठा रहे हो, वो भाइयों के घरों में जा जाके अजान सुना रहे हो जो मुस्लिम ही नहीं है। तो हमारे यहां कुछ ऐसे जज्बाती लोग हैं, उनको प्यार और मोहब्बत से आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनको इस जज्बातीपन में मोटिवेट बोलो नहीं करना, इससे आपको फायदे के बजाय क्या होगा, नुकसान होगा, इससे इस्लाम को फायदा नहीं होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया। दूसरी बात, जेल में जब कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई थी, क्यों हो गई थी, इसलिए कि बादशाह जो अजीज मिस्र ने सोचा कि अगर मैं इनको जेल नहीं करूंगा तो सारी दुनिया कहेगी फिर आपकी बीवी गलत थी, सही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह मुझे जेल जाना ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये लोग मुझे दावत दे रहे हैं, देखो जिना इतना बड़ा जुर्म है, आप कभी भी जिना के करीब मत भटको। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की जिंदगी गवारा कर ली, जिना के करीब नहीं भटके, निकाह करो, निकाह को फरोग दो, जल्द निकाह कर लिया करो, अल्लाह ताला को निकाह करने वाले शादी करने वाले लोग पसंद हैं, अल्लाह जिना से मोहब्बत नहीं करता। तो जब जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, सारे गैर मुस्लिम कैदी थे वहां पे, तो दो कैदियों को ख्वाब आया, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा हमें ये ख्वाब आया है, आप हमें ताबीर बताएं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम ये समझते हैं पूरे जेल में आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं। जेल में गैर मुस्लिमों के बीच में रह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो गैर मुस्लिमों की रिपोर्ट थी वो क्या थी कि ये हमें सबसे अच्छे हैं, आप जेल में नहीं हो आप आजाद हो, यहां भी गैर मुस्लिमों की आपके बारे में रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, ये हमने सबसे बोलो ना यार आपसे कोई गलत तो नहीं गया, ये रिपोर्ट आपके बारे में पैगंबरों की, हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया, जेल में जाते ना ये काफिर का बच्चा सारा नमाज नहीं पढ़ता, वो तो भाई नमाज भी पढ़ते थे और तस्बीह भी पढ़ते थे, वजू भी करते होंगे, जो भी पैगंबरों का तरीका होता है, किसी को ये नहीं कहा कि तंग किया हो जाके, अगर तू पी क्यों रहा है, वो तो शराबी पीते थे, वो एक तो उनमें बाकायदा शराबी था जिसका काम ही बादशाह को शराब पिलाना था, कुछ भी तो पीता होगा ना, कहीं भी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये एटीट्यूड होता कि पी के बदबू आ रही है यहां से, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और गिर रहे हैं यहां पे मेरे ऊपर आगे, तो फिर वो ये कहते हैं कि आप हमें सबसे अच्छे हो, कहते यार सबसे बदला कौन है माज अल्लाह, यही कहते ना। हजरत यूसुफ का एटीट्यूड उस जेल में ऐसा था कि जेल के कैदियों ने कहा कि इससे अच्छा इंसान हमारे जेल में बोलो नहीं है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर पे क्या काम किया, जब उनको ताबीर बताने लगे तो पहले उनको तौहीद की दावत दी, या साहिब सिजनी, ऐ मेरे जेल के साथियों, ऐ मेरे जेल के साथियों, इससे पहले दावत नहीं दी, कुरान के इससे जाहिर सही लगता है क्यों जी, अच्छा बताइए मैं लपेट रहा हूं, इससे पहले नहीं, वजह क्या है कि खुद से जा जाके इंटरफेयर करना, इसमें बार दफा रिएक्शन का खतरा ज्यादा होता है। अगला नहीं दावा सुनना चाहता, आप जा जाकर उसको जबरदस्ती थोप रहे हो दावत। यहां यूसुफ अलैहि सलाम ने देखा कि दावत का मौका है, तो क्या ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, कितना अच्छा रवैया। तो इससे कहने को बहुत कुछ है, मैं तो जल्दी से समेट रहा हूं। फिर यूसुफ अलैहि सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर, बादशाह को ख्वाब आया, उसको सही ताबीर बताई और बाहर निकले, तो उस स्टेट की भलाई सोची है यूसुफ अलैहि सलाम ने। भलाई क्या सोची कि उन्होंने कहा कि तज़रअून सब्अ सिनीन दअबा, मिस्र में 7 साल के लिए कहत आने वाला है। यूसुफ अलैहि सलाम ने ये नहीं सोचा कि गैर मुस्लिम रियासत है, बर्बाद होने दे उसको, कैसे मरे, बल्कि प्लान बना के दिया कि देखो 7 साल अगले बड़े खतरनाक आने वाले हैं, आपने जो भी गंदुम निकले उसको उसके होशों से नहीं निकालना, उसको महफूज रखना है, इतनी इतनी खाओ जितनी 7 साल में जरूरत है, बाकी सारा अगले 7 साल के लिए स्टोर कर दो और फिर पूरी दुनिया में उसको बेचो, पूरे शाम में कहर पड़ेगा, सब लोग आएंगे। मिस्र की इकोनॉमी की को मजबूत करने का सबब बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसी सिरे में बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया। ये एटीट्यूड था एक गैर मुस्लिम रियासत में अल्लाह के एक महबूब पैगंबर का। समझते हो गए नहीं समझते? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इंसान का बच्चा बना दे, घर में भी बना दे और घर से बाहर भी बना। अच्छा चले, आप सवाल करने पढ़े पढ़े सुनाते रहे, मुझे थोड़ी खिंचा दे। ये सवाल बहुत सारे जमा हो गए। देखो जो फजर की नमाज पढ़ता है ना जमात से, इसका मतलब बाकी भी पढ़ता है, तो फजर को पकड़ लें, बाकी इंशाल्लाह नमाजें सारी कंट्रोल हो जाएंगी। और खवातीन से भी कुछ उसी गुजारिश करूंगा, देखो अल्लाह ने जैसे सदका को खैरात का मर्दों को हुक्म दिया, बिल्कुल उसी स्पीड के साथ सदका करने का हुक्म खवातीन को दिया। हमारे नबी मर्दों में सदका को खैरात की तरगीब दिया करते थे, फिर औरतों में अलग से जाके दिया करते थे, जिसमें खवातीन के सदका को खैरात किया करें अपने रिश्तेदारों पर। और खवातीन के लिए सबसे मुकद्दस रिश्ता शादी के बाद कौन सा है, बोलो ना, शोहर का है। अल्लाह ने शोहर का हक माँ बाप से भी ज्यादा है। इतना वफादार मियां आपको मिला हुआ है मार्केट में, ऐसे मियां आजकल शॉर्ट होते जा रहे हैं, उसकी कदर करो भाई, उसकी थोड़ी कड़ी तसीली बर्दाश्त कर लो। अल्लाह को मियां बीवी में का जुड़ के रहना पसंद है या अलहदा होना तलाक पसंद है अल्लाह को, तो ऐसा काम मत करो जिससे मियां बीवी का रिश्ता टूटे। तो जब तक बर्दाश्त पैदा नहीं होगी तब उस वक्त तक कोई रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता। ये माजरत के साथ सिर्फ खवातीन की खिदमत देखिए, पैकेज था जो इस्लाम का पैकेज है जो मैंने पेश किया है। आजकल ना मर्दों में बर्दाश्त है ना खवातीन में बर्दाश्त है। जरा जरा हिसाब ने मुझसे पूछा मेरे मियाँ को गुस्सा बहुत आता है, और फिर वो चाह रही थी कि मैं तलाक ले लूं। मैंने कहा आपके मियाँ को गुस्सा बहुत आता है, तलाक लेके नहीं और शादी करोगी, उसको हो सकता गुस्सा ना आता, पैसे ना खर्च करता हूँ बिल्कुल भी। वो ऐसे अखलाक का क्या करना है जिससे 5 रुपए निकाल के देने के लिए तैयार नहीं है। देखो हम पाकिस्तान में हमारी बीवी हमको ये बोल दें कि आप, हम तो वहाँ गैस का बिल भी खुद देते हैं, बिजली का बिल भी खुद देते हैं, मेरे माशाल्लाह 15 बच्चे हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि स्कूल की सारी फीसें, मेरी डिलीवरी और बच्चे की पैदाइश का खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? इस्लाम ने तो मर्द के कंधों पे डाल दी ना सारी जिम्मेदारी, औरत को तो इस्लाम ने हुक्म दिया बैठ के खाओ बस, ठीक है ना, अपने बच्चों को पालो घर में, अपने शौहर की जो भी जायज खिदमत है वो करो, इससे ज्यादा तो नहीं बनाया ना इस्लाम ने पागल। तो अब हम सारा वहां पर घर का भी खर्चा, गैस बिजली का भी खर्चा, तो कभी दोबारा है आदमी की घोड़ी भी घूमती है, गुस्सा भी आता है, उसको चीखता भी है, चिल्लाता भी है। अब हमारी मशरी की औरतें जो है ना, हम कहती हैं कि नहीं भाई अखलाक बहुत अच्छे होने चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ ये खर्चा हमारे जिम्मे से हटा दो, फिर देखो हमारे अखलाक। मैं बदअखलाकी की खुदाना पास्ता तरगीब नहीं दे रहा कि बदतमीजी करें, मैं खवातीन को बर्दाश्त सिखा रहा हूँ कि अगर अपनी जिम्मेदारियां मियां पूरी कर रहा है तो थोड़ी कड़वी तसीली बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है भाई, घर जोड़ने के लिए अदल बर्दाश्त से काम चलता है या बर्दाश्त से काम चलता है? मर्द को भी हुक्म है, औरत को भी हुक्म है, जोड़ने वाले बनो। तलाके अल्लाह को पसंद नहीं है, तो जोड़ो निजाम को अपने, तोड़ो मत इस निजाम को, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।
काफी सवाल आते हैं, ये पहले सवाल कई दफा आए और बहुत अहम सवाल है यहाँ के लोगों के मुताबिक, पहले मैंने उन्हीं सवालों को जमा किए। पहला सवाल, क्या हम कर्जे पे बैंक से एक अदद मकान ले सकते हैं?
देखो सूदी कर्जा लेना इस्लाम में हराम है, नाजायज है, शदीद जरूरत के वक्त लिया जा सकता है,
जरूरत क्या है, घर की रिहाइश की एक जरूरत है, लेकिन अपना घर जरूरत नहीं है, रहना जरूरत है। कोई घर रोड में नहीं रह सकता इंसान, तो अगर कोई रेंट पे किराए पे रह सकता है तो हमारा फतवा तो यही है कि वो सूद दे नहीं ले। तो इस्लामिक बैंकिंग को यहाँ मुसलमान रिवाज देने की कोशिश करें। कनाडा में, यूके में इस्लामिक बैंकिंग आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी आ गई है, तो उसको प्रमोट करें इस्लामिक बैंकिंग से। आप शिरकत मुतनाफिसा की बेस पर इस्लामिक बैंकिंग आपके साथ इन्वेस्टमेंट, लोन नहीं देता, नाम उसका लोन होगा लेकिन वो लोन नहीं देता, वो इन्वेस्टमेंट करता है आपके साथ, तो उस बेस से आप ये करें, मॉर्गेज की तरफ ना जाए।
यहाँ मतलब मॉर्गेज मिलने की जो सूरत है, मॉर्गेज उसी को मिल सकता है जो किराए पे भी रह रहा हो। तो अक्सर लोग यही कहते हैं भैया
किराए पे रहे थे सूद से।
हाँ जी, यहाँ
और इस्लामिक बैंकिंग को कोशिश करें ना यहाँ
जी, ये
रिवाज इंशाल्लाह तो फायदा हो जाएगा।
यहाँ खाने में कुछ रोजाना की इस्तेमाल की चीजों में अल्कोहल डालते हैं, इसका क्या हुक्म है?
हाँ, बड़ा मुश्किल मसला। देखिए, अल्कोहल का खारजी इस्तेमाल तो बिल्कुल जायज है, परफ्यूम वगैरह में खा नहीं सकते आप, समझते हैं? तो किसी दवा में हो जरूरत हो, चिंता अलग बात है, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल ना करें। जामे तो रशीद का एक गूगल पे आप लिखेंगे, हलाल फाउंडेशन एक इदारा है, उसमें खाने पीने की चीजों से मुतालिक हिदायत आपको मिल जाएंगे। वहाँ जो नंबर आएगा उस पर कॉल करके पूछेंगे, तो वो कोई कोड होते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत कम आना जाना होता है इन कंट्रीज में, तो वो चीजों के ऊपर कोड लिखे हुए होते हैं। इन मुल्कों में एक अच्छी बात है कि जो लिखा हुआ होता है अंदर वही होता है, ये अब तक रिपोर्ट यही हमें पता चली, ये गलत भी लिखी जाती है। तो उस कोड के मुताबिक देख लिया करें कि इसमें कोई सुगर की चर्बी वगैरह तो शामिल नहीं है, कोई हराम जेलेटिन तो शामिल नहीं है, तो वो कोड याद कर लें, गूगल पे पड़े हैं जी, वहाँ एप्लीकेशन आ गई है, और खानदानी काम हो गया।
और अगर
खानदानी काम हो गया,
और अगर किसी खाने की चीज के बारे में शक हो कि ये हलाल है या नहीं, फिर
जब तक यकीन ना हो जाए आप नहीं खा सकते। लेकिन अब यकीन के लिए जो बेचने वाला मुसलमान है, अगर वो इत्मीनान दिला रहा है और सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि हलाल है, ठप्पे लगे हुए होते हैं, वो बताए कि हाँ भाई हम जिनसे खरीदते हैं वो इसका इंतजाम करते हैं कि हाथ से बाकायदा जानवर अल्लाह का नाम लेके जमा करें, जब तक ये इत्मीनान ना दिलाए खाना जाए नहीं। लेकिन इत्मीनान का मतलब ये नहीं कि अब आप वहाँ मुर्गी देखने के लिए जाए, फिर वहां खड़े हो, फिर ये सुई पाक थी कि नापाक थी, और फिर इतना तो जाहिर है फिर तो एक पांच साल में एक आध मुर्गी का लेग पीस ही खा सके। लेकिन इतनी जल्दी भी ना खाएंगे जैसे आजकल लोग खा रहे हैं, तो हलाल का ठप्पा देकर खा लिया, ठप्पा बहुत लोग लगा रहे होते हैं जी।
ये भी सवाल काफी ज्यादा है कि मेरे पास फ्रांस के पेपर नहीं है, यहाँ मेहनत करता हूँ, क्या मेरी कमाई हलाल है या हराम है?
किसी के पास फ्रांस के पेपर नहीं है, मेहनत करके कमा रहे हैं, तो कमाई तो हलाल है, क्योंकि वो तो उस काम की गर्मी मिल रही है ना जो आप कर रहे हैं, लेकिन बगैर पेपर के रहना भारत गैर कानूनी है, नाजायज है, तो आप पेपर बनवा लें, आप वकील से रब्ता करें, वो आपको बता दें।
ये भी अक्सर
झूठ ना बोले, उसमें झूठ ना बोले
जी, बिल्कुल
आप कहें सच बोलेंगे तो फिर ये वापस मुल्क भेज देंगे, तो चले ना वापस, क्या वहाँ लोग नहीं रहते क्या? हम वहीं रहते हैं, उम्र 15 हो गए और यहाँ तो 15 बहुत मुश्किल, और अपने खर्चे पे, यहाँ तो सुना है गवर्नमेंट बच्चा पैदा होने पर आराम से देती है, फिर भी नहीं होते लोगों के, 4-5 से ज्यादा नहीं होते, तो वैसा ही है कि पाकिस्तान इतना भी नहीं है यार जितना आप समझ रहे हो, तो वहीं जाके रह लो, गैर कानूनी रह पाओगे, समझ रहे हो? पेपर मैरिज में आप तो सुना धोखा नहीं होता, पहले पेपर मैरिज में लड़कियों को धोखा बहुत दिया जाता था, सभी भी होते हैं, गलत है, खुदा की कसम ये बहुत अफसोस होता है कि गोली से आपने शादी की, वो समझ रही है आप वफा करोगे और नेशनलिटी लेने के बाद उसको छोड़ दिया, बताओ मुसलमान का इतना बदतरीन इमेज उसके साथ सामने जाएगा, कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा गहरा, जब इंसान में खत्म हो जाए ना, तो क्या अरबी का मकबूल है कपाल माशी का, फिर जो चाहे करो, गलत है यार। यही बात है, जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे तो यही होगा भाई, गैर कानूनी मत रहो, मत झूठ बोल के या पेपर बनवाओ, आप अपने मुल्क में रह लो, क्या है वहां पर रिक्शा चला लो, टैक्सी चला लो, मरे हो थोड़ी यार, रक्षे वाले ज्यादा खुश देखे मैंने, और पाकिस्तान में जो टमाटर बेचने वाले को कभी डिप्रेशन की गोली खाते हुए हमने नहीं देखा, सारे मालदार लोगों को हमने देखा है डिप्रेशन से मर रहे हैं और ये हो रहा है, तो खुशखुशियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या टमाटर का बंद, मैं नहीं कह रहा टमाटर बेचते, लेकिन अगर कुदरत आपसे टमाटर ही बिकवाना चाहती है तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, समझते हो? हराम की तरफ बच जाए।
यही सवाल सवाल जो कई तरीकों से आए, अगर इसमें ये बात थी कि अगर मजबूरी की तहत में पाकिस्तान में या अपने मुल्क में कुछ वालदैन हैं जिनकी हम कफालत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में झूठ बोलकर पेपर बनवाने जायज नहीं है?
मुआहदे के खिलाफ कर दी जायज नहीं है, ये तो बात हो चुकी है, फिर झूठ उसकी हद कहां तक होगी? हर आदमी की जरूरत का दायरा, एक आदमी कहता है मुझे रोजाना चार टाइम खाना चाहिए, ये मेरी जरूरत है, तो ये फैसला कौन करेगा? अल्लाह ने खिंजीर खाने की इजाजत दी है उस सूरत में जब आपको यकीन हो जाए कि नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो जान बचाने के लिए तो हराम की अल्लाह ने इजाजत दी है कि आपकी जिंदगी बचाना तो सबसे पहले है ना, इस जरूरत को अल्लाह ने जरूरत माना है। लेकिन कोई क्या करता है कि खिंजीर के कबाब बना के खा रहे हैं और कह रहे हैं एक्चुअली मैं कबाब के बगैर मुझे हजम, तो फिर ऐसा नहीं होता ना, तो आप हद से तजावुज ना करें।
मुफ्ती साहब, हम पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं मगर घर और काम की जगह पर पढ़ते हैं और जुम्मे के दिन मस्जिद में, क्या हमें वो सवाब मिलता है जो नमाज मस्जिद में बनना पड़ता है?
मस्जिद की जमात का सवाब तो मस्जिद में मिलेगा, कहीं मस्जिद नहीं है तो आप बना लेना, आपकी इजाजत है, परमिशन लेकर बना लें, काम पर होते हैं तो निकालें टाइम उस काम से।
यही भी एक सर सवाल है कि काम पर नमाज अगर है,
पर नमाज छोड़ने की इस्लाम में किसी कीमत में इजाजत नहीं है, खूब समझ लें, ऑप्शनल नहीं है नमाज। ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, اللہ نے فرمایا مسلمان پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, یعنی کہ شام کو جاب سے گھر آئے تو پانچویں گھنٹی پڑھ لیں گے, ہر نماز کا اللہ نے متعین ٹائم رکھا ہے, اس میں آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی, چھوڑنے کا آپشن اسلام میں نماز کا نہیں ہے, یہ نماز سے نکال دیا ہے۔
اسی وجہ یہ سوال کہ مجھے کام پہ نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, باقی نمازیں میں پابندی سے پڑھتا ہوں, کیسی ہے
آپ پرمیشن لیں گے محبت سے اس کو سمجھائیں, مانے گا اس کو لکھ کے دیں, بولے بھائی ہمارے بدن میں جمعے کی نماز بہت ضروری ہے, یہاں میں نے دیکھا کہ جب تمیز سے بات کی جائے محبت سے بات کی جائے اس کی خدمت زیادہ کر لیں, آپ بولے یار میں تنخواہ اتنی ہی دوں گا لیکن آدھا گھنٹہ ٹائم زیادہ دوں گا میں اس کے بدلے میں, تو جس کو آفر دیں آپ کوئی قربانی دے تو دے دے گا ان شاء اللہ جمعے کی نماز کا ٹائم۔
صاحب ایک عورت
جب نماز کا ٹائم آفس میں ملتا ہے تو لوگ بڑے خوشبوخو سے پورے اشراق پڑھ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط ہے نا, تو سنت موقع پڑھے اور فرض پڑھے اور پدری ولی سے دیکھیں اس کام کو فوکس کریں آپ۔
ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ سے طلاق لے لی ہے اور شوہر جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں اور ذمہ داری بھی پوری نہیں ادا کر رہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟
لیکن کورٹ سے طلاق جو ہے نا وہ تو جب تک مفتی کے پاس پورا وہ نہ بھیجا جائے گا تو اکارڈنگ ٹو اسلام یہ ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ پورے پیپر پڑھنے پڑیں گے, تو ایسے میں عمومی فتویٰ اس کے کسی کو نہیں دے سکتا, جب تک وہ ڈاکومنٹس پورے پڑھے نہیں جائیں گے, عورت نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, پھر شوہر نے اس پہ سائن کیے کہ نہیں کیے, نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے, پوری ڈیٹیل ہے اس کے, جب تک وہ پیپر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو آپ انڈیا یا پاکستان یا یہاں کسی, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ ان کو یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں, تو یہاں بھی علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کریں۔
ہم یہاں ہیں اور بیوی پاکستان میں ہے, ہم فی الحال پاکستان جا نہیں سکتے یعنی پیپر نہیں بنے, اور بیوی کو یہاں بلا نہیں سکتے, اس پر روشنی ڈال دیجیے۔
روئے بیٹھ کے ختم کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص کی مدد اپنے ذمے لازم کی ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے, تو جو بیوی کو اپنے ملک میں بلانا چاہے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے قریب نہ جائے, اسی حدیث کے مطابق اللہ نے اس کی مدد کی اپنے ذمے لازم کر لیا, آپ کی بیوی پاکستان میں یا انڈیا میں آپ یہاں رہتے ہو یا افغانستان میں آپ یہاں رہتے ہو, بیوی کے بغیر تو میرا گھر گزارا بہت مشکل ہے اس زمانے میں, تو آپ کیا کرو آپ اپنی ارننگ کو اس نیت سے بڑھانے کی کوشش کرو کہ اللہ میں اپنی بیوی کو بھی یہاں لانا چاہتا ہوں تو میری تنخواہ بڑھا دے, تو اللہ سے امید ہے ان شاء اللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ گناہ کے قریب میں جاؤ,
فرانس میں مقیم نوجوان خواتین و حضرات میں نکاح کا رجحان ختم ہو رہا ہے, آپ دین کی روشنی میں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں یعنی والدین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
دیکھو سختی تو بالغ اولاد پہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے,
रिएक्शन ही होगा आगे से, बाकी हो जाएगी। और मैंने बताया तबलीग में जुड़ाओ, उनको निकाह की अहमियत बताओ, यहाँ उलमा हम तो छोटे लोग हैं, उलमा को क्या हम तरजीह दें कि लोगों के निकाह की तरजीह दें, लेकिन जो कुरान और सुन्नत में चंद निकाह की तरजीहात हैं उसी को अहमियत के जमाने में बहुत बढ़ गई है। आपका तो फैमिली सिस्टम फिर खराब हो जाएगा। तो जब अल्लाह मियां ने तो जितने पैगंबर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ये सारे तो निकाह करके रहे। हजरत ईसा का निकाह नहीं हुआ, लेकिन क़ुर्बे क़यामत में जब नाज़िल होंगे तो क्या करेंगे, वो भी निकाह करेंगे। तो पैगंबरों की सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की खातिर 10 साल बकरियां चराई हैं। जो उनकी ज़ौजा थी ना, उनके बाप ने कहा था मैं अपनी बेटी आपको इस शर्त पे दूंगा कि आप 10 साल 8 साल बकरियां चराओ, 2 आप चाहो तो अपनी तरफ से इजाफा करो। हजरत मूसा ने कहा मुझे ये पेशकश कबूल है। 8 साल बकरियां चलाई हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी के लिए, और आपकी बीवी पॉकेट में भरी होती है और आप नखरे कर रहे होते हैं। अल्लाह को और ये खूब रखो ध्यान में रखो कि जवानी में जो आप जो अय्याशी अगर कोई करेगा ना, तो बुढ़ापे में ये सारी अय्याशियां निकल आती हैं। फिर बुढ़ापे में जब एजड हो जाता है इंसान, तो शादीशुदा आदमी के मजे होते हैं, उसके बेटे होते हैं, उसकी बेटियां होती हैं, उसके पोते होते हैं, उसकी नवासियां होती हैं, उसके बहू होते हैं, उसके दामाद होते हैं। तो फिर आपको ये खलेगा ये कि यार मैंने क्यों नहीं की टाइम पे शादी। तो मैं खवातीन को भी, लड़कियों को भी कहता हूँ, मर्दों को भी कहता हूँ, अपनी टाइम को जाया मत करो। हाँ, शादी के बाद भी आप पढ़ाई जारी रखो। निकाह को ये क्यों समझते हो कि हम पढ़ने से रह जाएंगे भाई, शादी भी करो और अपने जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो आप करो, किसने मना किया है, और ज्यादा अच्छे तरीके से कर लोगे।
सब मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो मैं तो नौजवानों को भी अक्सर यही मशवरा देता हूँ जल्दी करें, तो फिर वाले की तरफ से के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है कि भाई तुम बेटा।
इस बारे में नहीं है, जब अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी तो अब्बा को रोकने की इजाजत नहीं है। अब्बा रोकेंगे भी तो आप ना रोको। इसमें माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है, अनलिमिटेड हुकूक अल्लाह ने किसी के भी नहीं रखे। अब्बा आप पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि नहीं करनी शादी। आप अब्बा को बोला करो, अब्बा अगर आपके अब्बा आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते। ऐसा जो है अब्बा की बात, इसका किसी के बाप के साथ जिसका कोई जवाब
नहीं। इसी तरह अक्सर ये सवाल आता है कि मिसाल के तौर पर बच्चा पाकिस्तान, लड़का पाकिस्तानी हो और लड़की जो है वो किसी और मुल्क, मुसलमान मुल्क में ताल्लुक रखने वाले हैं, और यहाँ फ्रांस में तो बहुत ज्यादा हमें मसाइल पैदा होते हैं, तो क्या किया जाए
उसमें? इजाजत दी है निकाह करो, बुराई से तो बेहतर है ना, जहाँ चाहो करो शादी, फ्रेंच से करो, स्वीडन से करो, सऊदी से करो, पाकिस्तान से करो, करो अल्लाह का वास्ता, बुराई से बचो। बाकी सीकार को तरजीह दो, हदीस में आता है जो नेक हो परहेजगार हो उसको तरजीह दो। अब निकाह में रुकावटें डालेंगे ना तो फिर जिना आसान होगा। देखो वाले शादी से तो नहीं मना कर सकते कि शादी ना करो। हाँ ये जरूर है कि अप्पा की मर्जी से, माँ की मर्जी से करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी बीवी आपकी अम्मा की बहू भी तो होगी ना, वो थोड़ी कि आपकी बीवी है, वो आपकी अम्मा की बहू भी तो है ना, डॉटर इन लॉ भी तो है ना, वो तो ऐसी डॉटर लेकर आओ जो आपकी अम्मा के लिए काबिल कबूल तो हो। अम्मा के पता नहीं क्या उठा के ले आया मार्केट में, लास्ट में एडजस्ट ही नहीं हो रही है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मा अब्बा को भी चाहिए कि दिल थोड़ा सा बड़ा रखें, और आपको भी चाहिए कि अम्मा अब्बा की मर्जी का भी थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा सा मिलजुल के चलो तो हिसाब होगा। दोनों 180 के जाबी में चल रहे होते हैं फिर मसला खराब हो। अम्मा भी चाहती है ऐसी बहू आए कि बस जैसी मैं थी अपनी सास के लिए, और इनकी सास का ख्याल होता है कि ये बिल्कुल भी वैसी नहीं। मैं अक्सर वाक्य सुनाता हूँ ना, एक खातून की बेटे की शादी हुई तो किसी ने पूछा बहू कैसी आई है। खातून, ये उन सासों की बात कर रहा हूँ जो मेरा बयान नहीं सुन रही है, तो सास ने कहा कि कमबख्त ऐसी नालायक बहू है, 12 बजे तक बिस्तर पे पड़ी रहती है और मेरा बेटा जोरू का गुलाम पड़ा रहने देता उसको, 12 बजे का महा सो के उठती। अच्छा जी आपको दामाद कैसा मिला? दामाद बहुत अच्छा, मेरी बेटी 12 बजे तक सोती है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ये जो सासें बयान सुन रही हैं इनकी हरगिज बात नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ एक चुटकुला समझे, ये वाली नहीं है। तो अम्मा को ऐसी बहू, अम्मा को भी चाहिए थोड़ा अपना दिल बड़ा रखें, ठीक है भाई अब जमाना तब्दील हो चुका है, मेरा बेटा बुराई से बचना चाहता है, वो फ्रेंडशिप भी कर सकता था, वो गर्लफ्रेंड भी बना सकता था, वो तबीयत से इंसान का बच्चा बन के शादी करके घर में लेकर आ रहा है, तो आने तो यार चल बेटा तेरी चॉइस है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी आड़ी तिरछी भी बर्दाश्त कर लेंगे, पर बेटे को भी चाहिए कि यार थोड़ा सा अम्मा जिसने पाल पोस के बड़ा किया है मुझे, थोड़ा सा उसके जज्बात का भी ऐसी चीज मार्केट में न लेकर हम जो खानदान में एडजस्टिंग हो, ये नहीं होना चाहिए।
ये कुछ हल्के छोटे छोटे सवाल है कि ब्यूटी पार्लर में मैं काम करती हूँ और आईब्रोज और फेशियल वगैरह करती हूँ,
मैं इस्लाम में आईब्रोज बनाने की इजाजत नहीं है, तबीयत खतिला खराब हुई है उसको, आईब्रोज ना बनाए, बाकी औरत के लिए जीनत इख्तियार करना जायज है, तो ब्यूटी पार्लर बताते खुद कोई नाजायज अमल नहीं है, क्योंकि उसमें गैर शरी फैशन की इजाजत नहीं है।
और उसकी कमाई का क्या करें अगर
बस आईब्रोज अगर बना के कमाई ली है तो फिर वो इतना हिस्सा सबका कर दें उसका, और आईब्रोज अगर किसी की बहुत ज्यादा मिली हुई है, बहुत नॉर्मल उससे हटी हुई है, तो उसको इतना किया जा सकता है जितनी नॉर्मल होती है, समझ रहे हैं ना, उसको ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करना। इसकी मिसाल है जैसे किसी की नाक खुदा ना पास्ता बहुत टेढ़ी है, कलाइशी बिल्कुल कोई ऐब है, ऑपरेट करके उसको सीधा कर लेना तो जायज है, लेकिन आपकी नाक फितरतन मोटी है, आप चाह रहे हो मुझे बारीक नाक वाले पसंद है, ऑपरेट करके बारीक करा दिया उसको, आपको कह रहे यार वो बड़ी मोटी नाक बड़ी जज रही है, मेरी बारी है तो मैं ऑपरेट करके मोटी, ये तकलीर असल चिल्ला, ये क्या अल्लाह की तकलीफ को आप क्या कर रहे हैं चेंज, ऐब दूर करना जायज है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम करना जायज बोलो नहीं।
एक खातून के साथ में महीने में बच्चा जायज हुआ तो क्या उसका उसकी नमाज जनाजा होगी,
बच्चे की उस अगर वो पैदा होते हुए जिंदा था तो फिर उसकी नमाज जनाजा होगी, अगर वो जिंदा पैदा नहीं हुआ तो फिर नमाज जनाजा नहीं होगी।
सवाल आते हैं कि अगर बच्चे हमारे नमाज छोड़ दें और नमाज ना पढ़े तो क्या किया जाए,
भाई अगर आप उनसे सख्ती करेंगे तो बागी होंगे और कुछ नहीं, यहाँ के जो हालात है बल्कि तो वहाँ भी यही हालात पैदा हो गए हैं, आजकल की जो यंग जनरेशन है ये उल्टा घूमना शुरू हो जाती है, तो तबलीग का रास्ता देख रही है, उनको माहौल में जोड़ो, जबरदस्ती आप उनका दिमाग चेंज नहीं कर सकते, उल्टे हो जाएंगे वो बिल्कुल ही, ठीक है ना, जो हालात के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसलिए आप उनको मोहब्बत से तबलीग में जोड़ो, शुरू से ही उनको दीन की तरफ रखो, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 99% चांस है कि वो सही चलेंगे।
फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, आप सुबह खुलती है बस दो फर्ज पढ़ लेते हो,
जिस दिन फजर की नमाज रह जाए तो उस दिन नाश्ता गोल करते हैं, पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह।
नमाज में कैसे ख्याल आते हैं, नमाज टूट जाती है और अगर आए इसका हल क्या है, और नमाज के दौरान हंसी आ जाए,
देखो नमाज में गंदे ख्याल आते हैं फिर नमाज टूट जाती है, देखो ख्याल आने पर ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है, ख्याल गैर इख्तियारी चीज है, जितना आ रहा है आने दें, इसको जबरदस्ती भगाएंगे तो ये जाने के बजाय और ज्यादा आएंगे, इनसे ना गुनाह मिलता है ना कोई नुकसान होता है, आप नमाज अपनी पूरी कर लें, ख्याल आ रहे हैं इनको आने दें, क्योंकि लोग दिमागी पागल हो गए हैं जिन्होंने इन ख्याल को लिफ्ट कराई है कि ये क्यों आ रहे हैं, इससे कोई गुनाह नहीं मिलता। मेरे पास एक आदमी को बदतसा आया कि वो मुझे पास है कह रहा मुझे तलाक का वहम हो गया है, हर वक्त मेरी जबान से तलाक ना निकल जाए, तो पागल हो जाते हैं लोग, किसी को वहम हो जाता है मैं पता नहीं मुझे उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे, ख्याल से कोई गुनाह नहीं मिलता, आने दो, काम वो करो जो अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया, देखो आप जब दफ्तर में जॉब करते हो, गोरे के बाद आप जॉब कर रहे हो यहाँ फ्रांस में किसी कंपनी में, उसने आपको कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट है ये आपने कंप्लीट करना है, सुबह आप 9 बजे आपके कुर्सी पे बैठना है और शाम 9 बजे आपकी छुट्टी होगी, ये काम है फाइलें, आप आए आप कह रहे हो मुझे ख्याल बहुत आ रहे हैं अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, मैं यूं कर दू मैं यूं कर दू मैं ऐसा कर दू मैं यूं कर दू, बोरा कह रहे तेरे जिसने जो काम लगाया था किया कि नहीं किया, अगर वो काम किया कह रहे ख्याल पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, मुझे फर्ज चाहिए काम चाहिए, क्या ख्याल है बेगम ने आपको भेजा अंडे लेकर आओ, हम तो कोई मिसाल देंगे ना हमारे यहाँ चल रही है, आपको सास के बारे में गलत ख्याल आता है कि मेरी सास चंगेज खान लगती है मुझे और मेरी बेगम ऐसी और मेरी यूं, काश मैं इससे शादी, ख्याल आ रहे हैं बस से आ रहे हैं, लेकिन आप जितने अंडे बोले थे उतने लेकर आ गए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपने बेगम के हवाले कर दिए, बेगम कहेंगी वेल डन बहुत अच्छी मिला क्या ख्याल है, लेकिन अगर आप उन ख्याल की वजह से काम ही नहीं किया आपने, काम ही नहीं किया आपने और ख्याल बहुत अच्छे आ रहे हैं आपको, बेगम ने बोला जी एक दर्जन अंडे चाहिए आप घर से निकले, आप मेरी बेगम कितनी अच्छी है बड़े अच्छे से फैलाता है, मेरी सास कितनी अच्छी है मेरे ससुर कितने अच्छे, अंडे भी लेकर आया आप बेगम कह रही अंडे खाकर, बेगम आज मुझे तुम्हारे बारे में इतने अच्छे फीलिंग आई है ना, इतने अच्छे ख्याल आए हैं कि मैं अंडे नहीं ला सकता। बेगम बोलेगी अपने ख्याल अपने पास रखो। तो ड्यूटी जो जो काम जिसके जिम्मे लगता है ना, अगर वो काम पूरा कर रहा है तो उसको उसका अजर मिलता है। अल्लाह ने हमें बताया इस टाइम पे खड़े होकर वुजू करके नमाज पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ ले, उसके बाद सूरत पढ़ ले, फिर रुकू कर ले, फिर कौमों में जाकर रबना लगल हम कह दे, फिर दो सजदे कर ले, फिर ये कर ले, ये प्रॉपर वे में सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, नमाज तुम्हारी क्या हो गई कम्प्लीट। ये जिसने काम कर लिया अच्छे ख्याल आता है, गंदे ख्याल आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाब मिल जाएगा। और अच्छे ख्याल आ रहे हैं नमाज पढ़ नहीं रहा, ख्याल का कोई कोई फायदा नहीं। गंदे ख्याल आ रहे, काम पूरा कर रहे हैं, तो कोई ख्याल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वक्त के मरीज दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, इससे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। इन वस्तुओं को लिफ्ट ना कराया जाए। एक फुटकला सुना दो, ये वस्तुएं ऐसी चीज है कि इनको जितना निकालेंगे ना उतना दिमाग में उल्टा घुसेंगे। एक आदमी हमारे यहाँ तो ताबीज डंडे बहुत होते हैं ना पाकिस्तान में, इंडिया में, तो एक जाहिर पीर ताबीज दिया करता था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा लेता था, वो लाखों रुपए का एक ताबीज देता था और कहता था इसमें जब कोई पूछता ना इतने पैसे क्यों ले, होता था 100% गारंटी है कि ताबीज असर करेगा। लोग जाते हैं उसके पास, एक देहाती चला गया कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, उसने कहा तेरा ये काम हो जाएगा, 1,00,000 रुपए लूंगा, ये ताबीज ताबीज बना के दे दिया। था ये पीर बड़ा होशियार, इसने कहा देखो ये ताबीज तो मैंने 1,00,000 रुपए ले लिए, 100% गारंटी है कि ये असर करेगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तुम घर में दाखिल हो तो काले कुत्ते का तसव्वुर तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। बात बताओ किसके दिल में काले कुत्ते का तसव्वुर होता है घर में दाखिल होता है, है? अब उसने कहा यार ये काला कुत्ता आ गया ना दिमाग में उसके, काला कुत्ता अब कह रहे मेरे तो 1,00,000 रुपए बर्बाद हो गए, अब बार बार ना झटक रहे काला कुत्ता निकले उसके, वो तो कितना कुत्ता निकालोगे कुत्ता उतना आए दिमाग उतना ही आया है ना में कुत्ता। मैंने यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे कुत्ते देखे, मैंने एक साथी देखा यार ये है कुत्ते लग दुम्बे रहे हैं जबरदस्त किस्म के खूबसूरत। तो अब वो बार बार क्या हो गया गेट से जाके फिर वापस आए कि यार ये कमबख्त काला कुत्ता निकली क्यों क्यों करते दिमाग से निकाल कुत्ते ने बताओ निकलने के बजाय और घुसना था ना तो और घुसेगा दिमाग में, इसका हल ये कि आ रहे हैं तो आने दे भाई। अब यदि ये तावीज को वैसे भी तावीज के क्या आज क्या होता है जो तावीज घंटे वाले घर में होते हैं, लेकिन ये तो एक बड़ी चालाकी से काम लिया ना उसने, डॉक्टर कहते हैं ये पैनाडोल की दो गोलियां जब असर करेगी जब काला कुत्ता दिमाग में नहीं होगा, तो इसका मतलब उसने आपके दिमाग में डाल दिया। तो वस्वसे का हल ये नहीं है कि निकालो उसको, उसको लिफ्ट ना कराओ, आने तो यार कुत्ता आता है कुछ नहीं होता, असर करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, वो आएगा। तो इसी तरह ये वस्वसे उल्टे सीधे इनको लिफ्ट ना कराएं, आ रहे हैं तो आने दें, ना निकालने की कोशिश करें, ना जानबूझकर सोच सोच कर लाएं, इनका इलाज ही यही है, समझते हो? चलो
की हाँ मैं बाद में अगर तीसरी रकत में सूरत पढ़ना भूल जाए तो क्या वितर अदा हो जाए?
वितर की तीसरी रकत में सूरत पढ़ना वाजिब है, अगर भूल गए तो चाचा साहब से नमाज हो जाएगी, जान कर छोड़ दिया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर रुकू में जाके याद आया ना तो खड़े हो जाए, सूरत पढ़ के दोबारा रुकू करें, फिर चाचा साहब की गंदे आते हैं।
वुजू की हालत में जिस्म पर कोई नजासत लग जाने से वुजू दोबारा करना पड़ेगा?
अगर किसी ने वुजू किया और जिस्म पर कोई गंदगी लग गई तो उस जगह को धो लेगा, दोबारा वुजू करना जरूरी नहीं है। दोबारा वुजू जब ही टूटेगा जब पेशाब का खतरा निकल जाए या हवा वगैरह खारिज हो जाए, उसके बगैर नापाकी लग रहे थे वुजू नहीं टूटता।
क्या जादू की हालत में अपनी बीवी को तलाक दूं या क्या बोल
भाई? ये जादू बाजू की टेंशन लेना पड़ा करो यार, ये जादू के नाम पे बड़े ड्रामे हो रहे हैं और यहाँ इंडिया पाकिस्तान से यहाँ के लोगों ने दूसरे जगहों के माहौल को भी खराब कर रखा है। किसी बुरे में देखा आपने जिन आया हुआ हो यहाँ पे? अगर आया हुआ होगा तो समझ लो महल्ले में कोई इंडिया या पाकिस्तान का आमिल रह रहा होगा। सऊदी अरब में भी किसी पे जिन नहीं आता। अपने आप को छोड़ो इन चीजों से, हटाओ जादू जिन ट्रायल भूत, निकालो अपने आप को। लोग कहते हैं नबी के भी तो जादू का असर हुआ था, तो अल्लाह ने इसलिए होने दिया था ताकि लोग आपको बशर समझे, जादूगर ना समझे।
اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ بھی ہونا چاہیے تھا نا رضی اللہ عنہ پہ، حضرت عمر پہ بھی ہونا چاہیے تھا. سوچو اسلام دشمن قوتیں بہت کوشش کر رہی تھی، ایسا تھوڑی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا عمران خان سب سے پہلے نواز شریف پہ جادو کراتا، نواز شریف اس پہ پیپلز پارٹی پہ جادو کراتا. میں نے کاف سے کہا، میں نے کہا یار اتنا آسانی سے جادو جتنا ہماری مارکیٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو یہ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جے یو آئی پہ کرا دے، جے یو آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی پہ کرا دے، ہٹا ہی ختم. تو وہ جواب اتنا کیسا ہوگا، کہتے ہیں ان لوگوں نے ہتھیار کھینچے ہوئے ہیں، پڑھانے والے ہم نہیں بلائے ہیں. ضرور قسم کی بات، دنیا میں ہٹلر جادو کرتا نا، کیا خیال ہے جنگل لڑتا کیا کرتا؟ وہ جادو کرتا اور اس کے مخالف اس سے جادو کرتے، شروع میں ہی میچ کا فیصلہ ہو جاتا. یہ جادو صرف انڈیا اور پاکستان میں سر چڑھ کے بول رہا ہے، کیونکہ وہاں جادو کا علاج کرنے والے بہت لوگ. مجھ سے، میں دبئی جا رہا تھا، میرے ساتھ فلائٹ میں ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے اوپر جادو ہوا ہے، آپ روحانی علاج کرتے ہیں. میں نے کہا تو کہتا ہے کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نے یوٹیوب پہ میرا بیان ہے وہ ڈالا ہوا ہے. میں نے کہنا کس نام سے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. روحانی علاج والوں کا، تو میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں. سمجھتے ہو؟ ان چکروں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو. جب کوئی مشکل ہو اسباب کی اختیار کرو اور اللہ سے دعا. یعقوب علیہ السلام کتنی ٹینشن میں تھے، بچہ چھن گیا، کہیں دیکھا کوئی تابیز گھنٹوں میں لگے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ ساری زندگی اللہ سے دعا مانگی، صبر کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی میری تھی، تو ہر ایسے پاک، یہ دعا تھی. تو ہر مصیبت میں اللہ نے ہمیں کیا سکھائی ہے؟ اللہ سے مانگنا سکھایا. گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے، مصیبتوں کا حل اس میں ہے.
اسی سلسلے کیا انسان نظر بد سے بڑھ سکتا ہے؟
دیکھو نظر برحق ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، العین حق، لیکن اس میں بھی بعض جگہ بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نظر برحق ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں، اور احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن کوئی نظر لگنے کی چیز ہو سامنے. ہم نے دیکھا ہے، دیکھو ماں کے لیے تو اپنا بچہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے ایسے ایسے بچے ہم نے مارکیٹ میں دیکھے ہیں، حسن کے علاوہ سب کچھ ہے، اور ماں کوشش کر رہی ہوتی ہے اس کے حسن کو نظر نہ لگے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا حسن ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی جو نظر سے بچنے کا اہتمام کیا تھا کہ ان کے گیارہ بیٹے جب مصر میں داخل ہوئے نا، گیارہ بیٹے ایک دروازے سے، تو یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ نظر نہ لگ جائے، تو کہا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹوں ایک گیٹ سے مت جانا، الگ الگ گیٹ، ڈر تھا کہ نظر نہ لگے. تو گیارہ انتہائی خوبصورت بیٹے تھے، پڑیل جوان تھے، اس میں خطرہ تھا کہ لوگ دیکھیں گے یار ایک باپ کے اتنے خوبصورت لمبے لمبے گیارہ بیٹے، اور پھر مصر میں ان کا پہلے گئے تھے تو پروٹوکول بھی لوگوں نے دیکھا تھا، اس سے بھی جیلیسی. نظر اکثر حسد کرنے والوں کی لگتی ہے، جیلیسی. لوگ مصر والے کہہ سکتے تھے یار اتنا پروٹوکول ان کو مصر کا بادشاہ دے رہا ہے اور اتنے خوبصورت ہو رہا ہے ایسے لمبے لمبے، تو وہاں خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کا سائز ہی نظر لگنے والا نہیں ہے، آپ کا حسن ہے. یا بے انتہا دولت اچانک آ گئی ہو، مالدار لوگوں پہ نظر نہیں لگتی، لیکن غریب سے اچانک کوئی چیز ہوتی ہے نا جس میں لوگوں پہ جیلسی ہوتا ہے، یار یہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا اچانک، یہاں نظر کھانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہاں غریب سے بہت سخت تاکید ہے، اور آپ نے فرمایا یہ نظر بد جو ہے یہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. ہمارا جانور، ہم تو وہاں منڈی میں دیکھتے ہیں سوراب روڈ سے بڑا خوبصورت جانور لے کر آیا اور دھام سے نیچے گرا ہو، لوگ آ کے تبصرے، ایسا کوئی چیز ہونا الگ سے بالکل، تو اس کو ایک دم ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک دم غریب تھے، اچانک پیسہ آ گیا، آپ سے دوستوں کی نظر کھا سکتی ہے آپ کو. تو اس میں آہستہ آہستہ سائیکل سے آپ پہلے رکشے پہ آؤ، رکشے سے تھوڑا سا ایف ایکس خرید لو تھوڑی سی، پھر آہستہ آہستہ لینڈ کرو. ایک دم سے آپ کو پیسہ آ گیا اور آپ جھونپڑے سے نکل کے اتنے بڑے بلڈنگ میں چلے گئے، تو پھر خطرہ نظر کا بولو زیادہ ہو. جو چیز مشہور ہو جاتی ہے، جس کی لوگوں میں شہرت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو نظر نہیں لگتی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹریس تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایکٹر تو بڑے ہینڈسم، ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ بھائی یہ لوگوں کے ذہن سے کیا ہو چکے ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں. تو دولت مند جو مالدار جو مشہور ہو، اس کی شہرت ہو چکی ہے، اس کو نظر لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے.
लेकिन अचानक तरसुल से तरक्की की तरफ इंसान जब जाता है तो इसमें नजर लगने का खतरा ज्यादा। अब इसमें नजर से बचे कैसे, तो इसके लिए दुआ का इंतजाम भी करें और अमल भी करें। अमल क्या है, अपनी अपनी जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं वो हरेक के सामने बयान बोलो रख करें। देखो किसी घोड़े का ये मलबूज है अंग्रेज का, लेकिन है बड़ा खानदानी कि आपके मशहूर क्या है कि आपके गम में कोई आपके साथ शरीक नहीं होता, लोग खुशियों में शरीक हो जाते हैं। लेकिन बात इसके बरअक्स घोड़े ने कहा है कि असल ये है कि आपके गम में तो लोग शरीक हो जाते हैं, आपकी खुशियों में शरीक होना बड़ा मुश्किल है। किसी को रोता देखकर रोना आ जाता है, किसी को खुश देख के हंसना आ जाए, ये बड़े दिल गुर्दे का बोलते हिंदी ये घोड़े का कौल है अंग्रेज का, और तजिया बेहतरीन है। तो आप जब अपनी नेमत बयान कर रहे हो ना, मेरे ये और चार शादियां और ये और पैसा और लैंड क्रूजर और वो, तो आप समझ रहे थे मेरा दोस्त बड़ा खुश होगा। बहुत कम ऐसे मार्केट में दोस्त होते हैं जो आपकी खुशी को देख कर क्या हो जाए कि यार चलो मैं उधर ही चिंती पे हूँ और मेरे दोस्त को अल्लाह ने इतना दे दिया। बहुत कम होते हैं, अक्सर मतलब ऊपर ऊपर से हंस रहा होगा, अंदर से कह रहा होगा कम बहुत। मेरा हमारे बचपन में एक दोस्त था, मुझे एक दिन कहने लगा, मैंने कहा क्यों बहुत ज्यादा बैठे हो, कह रहे यार मुझे दो गम है पाकिस्तान में, देखो कहते मुझे दो गम है। मैंने कहा क्या, कह रहे तो मेरे पास पैसा आने वाला इसका गम है, दूसरा मेरे दोस्तों का बहुत आ रहा है। कह रहे यार उनके पास भी ना है छापने यार। तो किसी को रोता देखकर रोना आ जाता है, किसी को हंसता देखकर हंसना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हरेक के सामने अपनी नेमत को बयान ना किया जाए। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ को जब ख्वाब आया तो अच्छा ख्वाब था, हजरत याकूब ने मना किया अपने बेटे को कि अपने भाइयों को ये ख्वाब मत बताना, तो तेरे भाई थे हसद का खतरा, समझते हो। तो पहला तरीका क्या है नजर से बचने का, हरेक के सामने अपनी नेमतों का इजहार मत करें, ऐसे लोगों के साथ करें जो आपकी नेमत पर खुश हो, खुश हो यार माशाल्लाह और अल्लाह तरक्की दे। दूसरी बात यह है कि हर नेमत को मंसूब अल्लाह की तरफ करें, अल्लाह को शोबाजी पसंद नहीं है। हदीस में आता है पिछली उम्मतों में एक शख्स ने बड़ा आला लिबास पहना और तकब्बुर से चला शो मारते थे, अल्लाह ने जमीन में फंसा दिया उसको। जो भी नेमत हो किसकी तरफ नस्बत करनी है, यार ये अल्लाह का है हमारा, तभी माशा अल्लाह का लफ्ज है ना, अच्छी चीज को देखकर क्या कहा जाए कि जो अल्लाह ने चाहा, ये नहीं अल्लाह की तारीफ करनी है जो अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया। तीसरा काम दुआओं का एहतमाम, सूरह फलक सूरह नास को रात को दम करके सोया करें अपने ऊपर, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामा मिन कुल्ली शैतानि वहामा व मिन कुल्ली आइनिल लामा, ये दुआ का लाजमी एहतमाम करना चाहिए, याद कर लेंगे दुआ, नेट पे गूगल पे मिल जाएगी। चलेंगे,
मेरा बेटा माजूर है, इसको पखाना साफ करने से क्या जरूर टूट जाता है?
नहीं, बच्चे का देखो एक माजूर बच्चे की जब माँ उसकी खिदमत करती है ये इसको हल्का ना समझे। बाद रिवायात में आता है माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है ना, हर हर घूट अल्लाह नेकी में, आजकल खवातीन बच्चे पालते हैं जान छुड़ाती है वो, ये जो बच्चे की खासों में माजूर बच्चे की खिदमत है तो जन्नत कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, तो बच्चे की निजात साफ करने से उसे नहीं टूटता।
एक बार का सवाल है कि 5-6 महीने से बीवी के साथ ताल्लुक नहीं पैदा हुआ तो इस्लाम क्या कहते हैं?
भाई ये तो हकीम से या डॉक्टर से बात करें। अच्छा 5-6 महीने से बेगम से ताल्लुक ही नहीं हुआ तो क्या क्या करें, वो डॉक्टर से बात करें? मुझे हर मसले का तो
नहीं सवाल यही है,
सवाल यही है।
काम के सिलसिले में रोजाना 100 किलोमीटर से ज्यादा सफर में नमाज के अहकाम बयान करवाएं।
देखिए सफर में ये होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं, रहने का मतलब जहां आपकी बीवी रहती है, अल्लाह ने बीवी को कितना प्रोटोकॉल दिया है, जहां आपकी बीवी रहेगी ना शरीयत उसको आपका घर कहती है। आप मिसाल के तौर पर आप कराची में पैदा हुए पले बड़े, शादी भी वहीं हुई, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, बेगम को आप कहां ले आए, पेरिस में ले आए आप, तो इस्लाम की नजर में आपका वतन कौन सा बन गया, यानी नमाज और रोजे और शरीय अहकाम के लिहाज, जहां बेगम होगी शरीयत उसको आपको क्या कहती है, वतन। और औरत के लिए उसका जहां शौहर रहता है वो जगह क्या है, वतन है। अब आप यहां से अगर पाकिस्तान अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाओगे कराची या लाहौर या पिशावर या अफगानिस्तान, तो अगर से आपके माँ बाप वहां रहते हैं, लेकिन अगर आप वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत करोगे तो आप मुसाफिरों वाली नमाज पढ़ोगे, समझते हो?
कौन सी नमाज पढ़ोगे?
लेकिन आप जहां अपनी बेगम के साथ रहते हो वहां एक सेटिंग के लिए भी आओगे उस शहर में तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको।
अच्छा, कितने किलोमीटर के सफर की वो शुरू होती है?
78 किलोमीटर। अपने शहर से दूर 78 किलोमीटर पे कोई जाने का इरादा करता है, अपनी लोकेशन से नहीं, शहर से बाद जो सिटी की आबादी जहां बिल्कुल खत्म हो रही है, बिल्कुल मुकम्मल शहर खत्म हो रहा है, उससे आगे 78 किलोमीटर के इरादे से जब कोई निकलेगा तो फिर शहर से बाहर निकलते ही मुसाफिर बन जाएगा वो।
समझने के लिए समझ,
यानी ये जरूरी नहीं है कि 78 किलोमीटर तक पहुंचने का इरादा हो तो फिर शहर से बाहर निकलते ही क्या बन जाएगा? मुसाफिर। शहर में रहेगा तो मुसाफिर नहीं होगा, खूब समझ। और इसी तरह जब वापस आ रहा है तो जब तक शहर में दाखिल नहीं हो जाता, शहर की जो मुजाफात है उसमें दाखिल ही हो जाता, वो मुसाफिर का मुसाफिर ही रहेगा। बेशक डेली जाता हो, रोजाना जाता हो, रोजाना मुसाफिर रहेगा, जब तक किसी दूसरे शहर में 15 दिन ठहरने की नियत नहीं कर लेता।
तीन सवाल रह गए, क्या मर्द औरत को कुरान पढ़ा सकते हैं?
भाई खवातीन को पढ़ाए ना, मर्द क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर कोई इंतजाम नहीं है तो अपनी बहन समझ के और इज्जत एहतराम के साथ मजबूरी है तो पढ़ा सकता है, लेकिन एहतियात करे उसमें।
मूल
तो यही है कि लड़कियां भी आजकल बहुत सारी कुरान पढ़ी हुई है, जब ये जरूरत खातून से पूरी हो सकती है तो मर्द के लिए तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक अमल है।
आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्या निशानी है कि वो आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे?
बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत हदीस में बयान की गई है उस सीरत और उस सूरत से अगर किसी ने पैगंबर को देखा है तो वो पैगंबर ही को देखा है। हदीस में आता है शैतान ला यतमत्तल बी, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो नबी को जिसने ख्वाब में देखा वो सच्चा ही ख्वाब है, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर निकाली जाएगी। उसमें ये नहीं होगा कि नबी ने किसी को कोई बात कह दी तो एज इट इज, ख्वाबों की ताबीरें होती हैं, जो कहा जा रहा है उसका एक मफहूम होता है, तो खुद से फैसला नहीं करना आपने। मिसाल के तौर पर नबी ने ख्वाब में आके फॉर एग्जाम्पल किसी को कह दिया कि तुम नमाज छोड़ दो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज छोड़ दो, आप इसकी ताबीर किसी अकलमंद से पूछेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जागती हालत में तालीमात दी है ख्वाब को उस जागती हालत के मुताबिक उसकी ताबीर की जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप ये ना मुफ्ती साहब ने बयान में कह दिया नबी ने ख्वाब, मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि बज़ाहिर शरीयत के कितने ही खिलाफ अगर बात ख्वाब में की जाए तो उसकी ऐसी ताबीर की जाएगी जो शरीयत के मुताबिक होगी। तो शरीयत वो नहीं है जो ख्वाबों में आ रही है, शरीयत वो है जो किताबों में फुकहा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखी है, वो शरीयत है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, समझते हो? क्योंकि आजकल लोग बड़ा भिड़क रहते होते हैं, मुझे पुराने बुजुर्ग ने ख्वाब में आगे कहा कि ये कर दो तो वो कर दो, फिर वो कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई, उसकी ताबीर होती है।
قرآن میں آتا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرق نہ کرو۔
پانچ منٹ ہیں کیونکہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اس آیت کی تفسیر میں، اس کا غلط مفہوم آج بیان کیا جا رہا ہے اور اس آیت سے پھر کو کم کرنے کے بجائے مزید پیدا کیے جا رہے ہیں۔
اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے پیدا نہ کرو۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو کوئی حنفی بنا ہوا ہے، کوئی شافی بنا ہوا ہے، کوئی مالکی بنا ہوا ہے، کوئی حنبلی بنا ہوا ہے، چار فرقے بنا دیے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرقوں میں بولو مت پکڑو۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تم نے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آج کل اس آیت کا نا دیکھو آیتوں کے ریفرنس ہر ایک کے پاس ہیں، آیتوں کے حوالے آج کل نمبر ہر ایک بتا دیتا ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہی علماء جانتے ہیں، تو لوگ آپ کو حوالوں کے ذریعے بیوقوف بنا کے پانچواں فرقہ پیدا کر رہے ہوں گے، چھٹا فرقہ پیدا کر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم فرقوں کو کیا کر رہے ہیں، ختم۔ پاکستان میں جماعت المسلمین بنی، انہوں نے کہا یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی چار فرقے ہم نہیں مانتے، ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین، ہم نے کہا پانچواں بھی لانچ ہو हो गया है, सही मतलब है, इससे चार खत्म नहीं हो जाएंगे, पांचवा आ जाएगा मार्केट में। तो हर आदमी ना वजन बेच रहा है अपना कुरान और सुन्नत के नाम पे। खूब समझ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया तुम में कोई असर की नमाज बनू कुरैदा पहुंचे बगैर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सफर लंबा था, रास्ते में दुश्मनों का खतरा भी था। आपने हुक्म दिया कि तुम सफर पे जा रहे हो, बनू कुरैदा पहुंच के इत्मीनान से असर की नमाज मकाम पे पहुंच के पढ़ना। सहाबा को भी ये इल्म नहीं था, हमारे पैगंबर के इल्म में भी ये बात नहीं थी कि ये लोग लेट हो जाएंगे और नमाज रास्ते में कजा होने का खतरा है। तो ये जब लश्कर चला है, अल्लाह की कुदरत के असर का टाइम खत्म होने लगा, अब सहाबा में इख्तलाफ पैदा हो गया कि भाई हम असर पढ़े या नहीं पढ़े। बाद सहाबा ने कहा कि नबी का हुक्म ये था कि बनू कुरैदा पहुंचे बगैर असर की नमाज नहीं पढ़नी, हम अगर पढ़ेंगे तो इस हदीस की मुखालफत। वही हदीस अपने कानों से मुझे सरद नहीं थी उसने, अपने कानों से सुनिए। दूसरे सहाबा की जमात ने क्या कहा, देखो पैगंबर आलिमुल गैब नहीं, उनका मफहूम बयान कर रहा हूं। नबी के इल्म में ये थोड़ी था कि नमाज कज़ा हो जाएगी, ये तो आपने एहतियातन हुक्म दिया। असर की नमाज का तो कुरान में खास तौर पे हुक्म है, हाफिज़ु अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो खुसूसन दरमियानी नमाज की, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कुरान की आयत को लिया और हदीस से तावील कर दी, समझ लो कि भाई नबी ने जो हुक्म दिया असर ना पढ़ो उसका ये मतलब नहीं है, उसका मतलब ये है कि बशर्ते के पहुंच जाओ मकाम तक, अगर मकाम तक नहीं पहुंचो फिर तो जैसे बाकी नमाजें फर्ज है अपने वक्त पर असर भी ऐसी फर्ज है। उन्होंने हदीस में क्या की, तावील की, किसकी वजह से, कुरान की वजह से। और दूसरे सहाबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, जिस कुरान ने हमें असर की नमाज वक्त पे पढ़ने का हुक्म दिया उसी कुरान ने क्या कहा, मैं युते रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल का माना की मानी उसने अल्लाह की मानी, तो रसूल के ऑर्डर पे भी इसी तरह अमल करना पड़ेगा जैसे अल्लाह को, रसूल ने मना कर दिया बस मना। अब दो जमातों में सहाबा तकसीम हो गए, जिनका ख्याल था पढ़नी चाहिए उन्होंने पढ़ ली, जिनका ख्याल था नहीं पढ़नी चाहिए उन्होंने छोड़ दी। मैं ऐसा नुस्खा आपको देख के जा रहा हूं ना, क्यामत तक के लिए फिरकावारियत से इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, जो आजकल मंजर बिक रहे हैं ना इत्तेहाद उम्मत के नाम से, उससे जान छूट जाएगी आपकी। तो अब दो राय पैदा हो गई, एक ने नमाज सजा कर दी और एक ने नमाज पढ़ ली। जब ये लश्कर नबी की खिदमत में वापस गया है, नबी ने दोनों में से किसी को भी गलत बोलो नहीं कहा। क्यों, दोनों का मकसद कुरान और सुन्नत को फॉलो करना था अपनी अपनी फहम के मुताबिक। हर आदमी को अल्लाह ने दूसरे से डिफरेंट किस्म की कॉपी दी। मेरे पास कोई आए ना अपनी राय मुसल्लत करे, पहले दलाई से समझाता हूँ भाई ये है भाई, फिर भी मुसल्लत कहता हूँ भाई मेरी अगर ये वाली खोपड़ी अगर जापान के साइंसदान मेरे अंदर फिट कर दे तो मेरी समझ में बात आ जाएगी। कुदरत ने मुझे जिस किस्म की खोपड़ी दी है मुझे उससे कोई बारी समझ में आ रही है, जो भाई मैं अपनी खोपड़ी से सोचूंगा ना। तो अब सहाबा किराम में जब ये इख्तलाफ हुआ तो नबी ने किसी को भी मलामत नहीं की और नबी की खामोशी ही बयान है, नबी कभी गलत बात पे खामोश नहीं होती, या खामोशी का मतलब दोनों ठीक है। इसने उसूल बयान कर दिया कि जब भी उम्मत में कुरान और हदीस की तशरीह में इख्तलाफ होगा और किसी का मकसद भी अल्लाह रसूल की मुखालफत ना हो बल्कि अल्लाह रसूल की हदीस के मफहूम समझने में अगर इख्तलाफ होगा तो वो इख्तलाफ उस फिरकावारियत में दाखिल नहीं है जिससे कुरान ने मना किया है, वरना तो सबसे पहले सहाबा में मामला फिर पैदा हो गए थे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये जो चारों इमामों का इख्तलाफ है ना, अबू हनीफा, ये सारे बड़े स्कॉलर हैं ताबईन तबा ताबईन के दौर के, इन्होंने कुरान और हदीस को जैसा समझा है हम और आप इनकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। इन्होंने कुरान और सुन्नत को समझा है जिस तरीके से और समझ के उम्मत के सामने पेश कर दिया। इनसे पहले बहुत सारी आरा थी, कोई किसी हदीस की क्या तशरीह करता था, कोई क्या तशरीह करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, किन लोगों ने रिसर्च का काम किया और फिर आखिर उम्मत सिमटते सिमटते चार फिकी मजाहिब में सिमट गई। तकसीम नहीं हुई है बल्कि क्या हुई है, ऐसा नहीं कि पहले एक थे और चार में बढ़ गए ना, पहले इख्तलाफात ज्यादा थे लेकिन जब तहकीक का काम हुआ ताबईन के दौर में तो ये होते होते किस में आ गए, चार मकासिब फिक्र में वजूद में आ गए। और इन चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, इन चारों का मकसद अल्लाह के रसूल की बात को फॉलो करना। तो बहुत से मसाइल ऐसे थे जिनमें इन चारों का इत्तेफाक हो गया। समझ में आ रही बात,
بہت سے مسائل ایسے تھے جن میں چاروں کا کیا ہو گیا اتفاق, کچھ مسائل ایسے تھے جن میں تین اماموں کا اتفاق ہوا اور ایک نے ان سے اختلاف, کچھ مسائل ایسے تھے جن میں دو ایک طرف اور دو ایک طرف. تو امت نے پھر اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا کہ اب مزید کوئی پانچواں مارکیٹ میں, کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا نا امت کو سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, اب کسی تحقیق پر اعتماد کرو اور دوسرے پر اعتراض نہ کرو. امام شافعی رحمہ اللہ نے تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا آپ امام کے پیچھے ہو تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بتاؤ یہ تورات اور انجیل کو فالو کیا یا حدیث کو فالو کیا؟ قرآن حدیث کو. امام ہونے کا بھی حدیث لے کر آئے, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا کہ نبی نے فرمایا جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, مطلب حنیفہ قرآن و انجیل کو مانتے تھے, آپ کس کو مان رہے ہو؟ جن کو کچھ اور چیز کو مان رہے تھے وہ بھی تو اسی قرآن و حدیث کو مان رہے تھے. بات یہ کہ ایک آپ کی تحقیق ہے, ایک ابو حنیفہ کی, ایک شافعی کی, ان کی تحقیق میں غلطی کا امکان کم ہے, آج کے اسکالرز کی تحقیق میں غلطی کا امکان یاد ہے. انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے. میں بھی مراکش کی ایک مسجد تھی, وہاں میں نے نماز پڑھتے ہوئے مالکیہ کو دیکھا, وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب کوئی ان کے سامنے حدیث پیش کرے نبی نے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آج کل جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہو. وہ جواب میں کیا کہے گا, بھائی امام مالک کی رائے کیا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, تو فوراً طنز کیا جائے گا, یار تم نے کلمہ امام مالک کے نام کا پڑھا ہے یا نبی کے نام کا پڑھا ہے؟ اس سے نوجوان آدمی کنفیوز ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث یا اس کو زیادہ آتا ہے امام مالک کو, یہی امیج بنے گا. حالانکہ امام مالک وہ حدیث اپنی مغطا میں لے کر آئے جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, پھر بھی فتویٰ کیا دیا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں نے مدینہ والوں کو دیکھا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, یہ مدینہ والے صحابہ تابعین کے شاگرد ہیں تو انہوں نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہوگی, ابھی تو یہ سارے کے سارے ہاتھ کھول کے, تو اگر سے حدیث میں ہے کہ باندھ رہا ہے لیکن آخر میں آپ نے کیا کیا ہے, بولو ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. لہذا ان کا فتویٰ کیا ہے, کس طرح پڑھی جائے گی؟ اب آپ کو یہ کہیں کہ بخاری میں ہاتھ باندھ کے ہے لہذا مالکی ہے جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے, صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں, وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں, وہ حدیث جو سینہ بسینہ تواتر جو امام مالک کا مشاہدہ ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو, اسی طرح رفع الیدین کرنے کی حدیثوں کو امام شافعی نے لیا, نہ کرنے کی حدیثوں کو کس نے لیا؟ امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے اہل کوفہ کا عمل دیکھا, انہوں نے کہا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود گئے اور حضرت علی کے شاگرد گئے, پورا اہل کوفہ جو ان کے شاگردوں میں تھا کوئی بھی رفع الیدین نماز میں نہیں کرتا تھا. تو یہ تواتر عملی سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی کی آخری نماز ترک کرنے کی تھی, لیکن امام شافعی نے ان قولی حدیثوں کو دیکھا. تو سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں, ان میں کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں قرآن و حدیث کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے اندھے مقلد ہیں, یہ وہ طریقہ ہے جس سے مسلمان میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت. اور یہ وہ نفرت ہے جس سے قرآن کی اس آیت میں منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ قرآن کی آیت کا مطلب بتاتا ہوں, مطلب کیا ہے قرآن میں جو آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس سے آپ لوگ کلپ بنا کے چلائیں, یہ امت کا بہت بڑا حل. جو جس طرح نماز پڑھ رہا ہے, تو صحابہ میں جو اختلاف ہوا نا وہ یہ نہیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے, تو اصل میں ان کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. بہت مشکل ہے بھائی. اب ہمارا اختلاف جو پاکستان انڈیا میں پھٹے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھنی تو سب کو پتا ہے, پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی یہی بولتے ہیں, دیوبندی بھی یہی بولتے ہیں, بریلوی بھی یہی بولتے ہیں, شیعہ بھی یہی بولتے ہیں, سارے بولتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ بھائی ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے, یہاں تک اٹھانا ہے, آمین زور سے کہنا ہے کہ آہستہ کہنی ہے, رکو میں جاتے ہاتھ اٹھانے کے نہیں اٹھانا, رکو سب کے برابر ہے, قیام سب میں ہے, فاتحہ سب میں ہے, کیا خیال ہے؟
بالکل.
تو ہمارا اختلاف کم نوعیت کا ہے اور صحابہ کے اختلاف اس سے بڑا اختلاف. ان کا یہ نہیں تھا کہ ایسے پڑھنی ہے, پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. ان کا تو یہ تھا کہ اب اور سب سے اہم ترین نماز قرآن کے مطابق اثر کی نماز ہے. دیکھو پہلا اختلاف کی کہ نماز سے اختلاف ہو رہا ہے, اس سے بڑا اختلاف اسلام میں کوئی, کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کسی ہے نماز, پھر اس کے طریقے میں نہیں ہو رہا, رکعتوں میں نہیں ہو رہا, نفس وجود میں کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس میں اختلاف ہو رہا ہے. تیسری بات وہ بھی اثر کے بارے میں رہا ہے جس کی بہت تاکید ہے, اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا.
फिर भी उसको गवारा किया गया, दोनों को जन्नती कहा गया, दोनों को ठीक कहा गया, तो हमारे ये कर लिया कि ये रख लेते हैं, नहीं किया, जोर से आमीन आयता आमीन, इसकी जेब पर आप धरने लगाओ कि इसकी नमाज सही है और मेरी सही है, इसकी कुरान हदीस के खिलाफ है, तो बताओ हम सहाबा से दो हाथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो भाई आप एक मकतबे फिक्र को फॉलो करें और दूसरे को क्या समझें सही, एक को फॉलो क्यों करें, इसलिए क्योंकि अगर एक को फॉलो नहीं करते इंसान से गुंजाइश निकालना होता है, कभी मां से फतवा, कभी मां से फतवा, कभी उधर से फतवा, कभी इससे ख्वाहिशात नफ्सानिया का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए कहा जाता है एक को फॉलो करो, दूसरे को भी क्या समझो, जन्नती समझो, सही समझो, आप इससे फटे खत्म होंगे। अब मैं कुरान की आयत का मफहूम बताता हूँ, ये जो कुरान में आता है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, इसका मतलब क्या है, दो, इसका आप शान नुज़ूल देखें, मुसलमानों के दो कबीलों में जंग हो रही थी असबियत और कौम परस्ती की बुनियाद पर, तो कुरान ने उनको मना किया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान कहता है मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई आपस में नहीं लड़ते, तो अल्लाह की इस आयत को, इस रस्सी को पकड़ो और आपस में तफर्रकू का मतलब ये नहीं कि फिरकों में लड़ो मत आपस में, और आज इसी आयत का सहारा लेके मुसलमानों को आपस में क्या करवाया जा रहा है, लड़वाया जा रहा है कि मैं कुरान हदीस को मानता हूँ, ये हनफी लोग अंधे मुकल्लिद हैं, ये शाफी लोग अंधे मुकल्लिद हैं, इससे कुरान की इस आयत की धज्जियां उड़ रही है, कुरान तो कह रहे हैं सब भाई भाई हो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे मुसलमानों में आपस में लड़ाई पैदा हो, तो ये लड़ाई के बारे में है, ये वो तफर्रकू वो फिरका के बारे में नहीं है, तफर्रक इफ्तराक ना हो, इफ्तराक से है ये, इंतिशार ना हो मुसलमानों में, तो हर वो काम जिससे मुसलमानों में इंतिशार पैदा हो वो किस आयत, ये आयत किससे रोक रही है, अगर कोई रसूल कर रहा है भाई वो भी हदीस का सहारा ले रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी हदीस का सहारा ले रहा है, वो अगर अबू हनीफा को फॉलो कर रहा है तो कुरान हदीस में फॉलो कर रहा है, क्योंकि अबू हनीफा तौरात और इंजील के नहीं, वो कुरान और सुन्नत से चलते थे, समझते हो कि नहीं समझते, हाँ हम ये कहते हैं कि इन आइमा ने कुरान को आपसे ज्यादा समझे, आप ये किसी ने इनमें से किसी को पढ़ो, समझते हैं कि नहीं समझते, काफी हो गया मेरा ख्याल,
दो ग्रेवी सवाल
दो रह गए,
चलो राजी एक अरबी साथी है जो नीचे है, वो नीचे तर्जुमा भी चल रहा है,
अच्छा माशाल्लाह, सही बोल रहे
हैं, मेरी स्पीड
तेज है भाई, ये जो मैंने अभी बयान किया ना तफरक होगी, जो अरबी साथी है स्पेशल, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अरबी में इसका खानदानी सा पूरा पूरा तर्जमा करके बताएं अरबी साथियों को, क्योंकि ये फिरकावारी सिर्फ अब पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, ये अरबों में भी बहुत स्पीड से फैल रही है, तो जो है ना इख्तलाफी मसाइल में आपस में कहा मुझे तो खुदा की कसम जब इन मुल्कों में आता हूँ जो देखता हूँ हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे, खुशी होती है कि यार सहाबा की ये वाली नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। हम जब सऊदी अरब गए या कभी किसी शाफी को देखते थे रफुल इदैन कर रहा हो तो खुशी होती थी यार ये भी हदीस से साबित है ये भी क्या है जिंदा है। तो इसी तरह भाई हमें अगर कोई बगैर रफुल इदैन के देखे तो उसको भी खुशी होनी चाहिए कि ये वाली नमाज भी क्या है जिंदा है। क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं वो कहते हैं उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे सहाबा रफुल इदैन नहीं किया करते थे। ये इमाम तिर्मिज़ी की गवाही है। तो बहुत करते भी थे लेकिन बहुत सारे तो खुशी होनी चाहिए यार। तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने तरीके साबित हैं सारे क्या हैं और भी काम करो यार ये सब किसका बसबी हुआ है। जब पौने 15 होते हैं ना तो फिर इंसान बच्चों की तरबियत इनमें टाइम लगाता है। जब फैमिली नहीं होती तो फिर इन झगड़ों में पड़ जाता है इंसान। शादी शुदा आदमी कहता है यार इस बीवी को कैसे खिलाऊं मैं। हमारे पाकिस्तान में हयाती ममाती का मसला बड़ा खड्डा बना हुआ है। एक दिन क्या हुआ मैंने एक शख्स को समझाया वो पता नहीं हयाती थे ममाती थे। मैंने कहा यार ये इस्लाम के बुनियादी मसाइल नहीं है खुदा का वास्ता इन पे मत लड़ो। उसने कहा ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है पता नहीं हयातुल नबी या ममातुल नबी बोलने का। अब मैंने कहा इसको दलील से कैसे समझा। मैंने कहा तेरी बीवी को पता है कि वो हयातुल नबी वाली है ममातुल नबी वाली है और उस बेचारे को क्या पता है। मैंने इसका मतलब फिर तो वो घूम रहे हैं वो तो मुसलमान ही नहीं वो तो मुसलमान है। मैंने कहा तू तो कह रहा है बुनियादी अकीदा है तो बुनियादी अकीदा तो पता होना चाहिए ना। मैंने कहा ये घर से बाहर निकल के बुनियादी अकीदा बन गया और घर में आके बुनियादी अकीदा। तो जो बेसिक अकीदे हैं वो तो तौहीद और रिसालत और ये बुनियादी अकाई है।
کا سوال تھا کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے اور وقت اس کے لیے میسر کرنے کے لیے کچھ مشورہ دے دیں. اور
یہ تو مدرسے میں آئے, یہاں ماشاءاللہ قرآن حفظ کروا رہے ہیں, یہاں آئے مدرسے میں قرآن
حفظ, یہاں کے طالب علم میں حفظ کر رہے ہیں.
دل سے دعا کرتا ہوں اللہ جلد سے جلد ان کو اس کی توفیق عطا
کرے. اور بھی جتنے بھی طلبا حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے
اللہ تعالیٰ سب طلبا کو حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں خاص طور پر آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے آنے کی آپ نے اجازت دی, اور یہاں امام صاحب کا بھی, یہاں کے مولانا حضرات کا بھی, مفتی حضرات کا بھی, اور یہاں کی مینجمنٹ انتظامیہ کا بھی, اور میرا خیال یہ بھی فرض بنتا ہے کہ یہاں کی حکومت کا بھی ہم شکریہ ادا کریں, فرانس پیرس کی گورنمنٹ کا, کہ انہوں نے ہمیں ایک مذہبی اسکالر ہونے کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی. بولو بھائی, یہ سب کا شکریہ. میں لم یشکری الناس لم یشکری اللہ, اس میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ
ایک آخری سوال یہ کہ آخری اور خوبصورت سوال یہ کہ کیا بہت بڑا گناہگار توبہ کے بعد اللہ والا بن سکتا ہے؟
بھائی بہت بڑا گناہگار توبہ کے بعد بالکل اللہ والا بن سکتا ہے, وہ میں نے حدیث سے سنائی. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, لیکن پکی توبہ ہو. پکی توبہ میں کہ آئندہ نہ کرنے کا ایگریمنٹ کرے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی.
کئی ساتھیوں نے اپنے والدہ کی بیماری کے لیے دعا کر رہے ہیں, مسجد کے لیے بھی
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارا یہاں جب اپنا قبول فرما, جو کچھ کہا اللہ اس میں کمی کو داری کو معاف فرما. اے اللہ, اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں دنیا میں جمع ہیں ہمیں جنت میں بھی اسی طرح جمع. اللہ قرآن میں تم نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی اللہ وہ تمام کی تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے یا والدہ یا والد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے, بیمار کسی کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما. جن کے والدین اللہ دنیا سے جا چکے ہیں, یا آبا و اجداد میں, یا دوست احباب میں, یا بہن بھائیوں میں, کوئی بھی دنیا سے جا چکا ہے اللہ تو ان کی مغفرت کرے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب کر. اے اللہ معاہدوں کا پورا کرنے والا بنا, ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ لوگ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھے رہے, بولتے ہیں کہ حساب سے سب کو سلام. بہت مشکل ہے.